that through your actions, you have put yourself in peril, you yourself and your family. That is the real loss. That is something we have to add. That is the real total loss.
لهم من فوقهم الغلل ومن النار ومن تحتهم الغلل ان کے اوپر بھی آگ سایہ پڑھنے ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی.
They'll be covered from fire on the top and covered from fire on the bottom.
سینڈوچ کی طرح ہوں گے.
It'll be like a sandwich.
تو بیوی بھی آپ کے سینڈوچ میں, بچے بھی آپ کے سینڈوچ میں, خود بھی آپ کے سینڈوچ میں.
The wife and children and yourself will be in that same sandwich of fire.
ذلك يخوف الله به عباده. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو.
And this is how Allah Subhanahu wa Taala warns His people.
یا عباد فتقون, اے میرے بندو ڈر جاؤ.
So you guys, oh my believers, you should be aware.
یہ باتیں اللہ پاک ایک خاص وجہ سے بھی بتا رہے ہیں.
And Allah Subhanahu wa Taala is telling this for a certain reason.
جب ایسا ہو تو اس وقت اللہ پاک کو رحم کا واسطہ نہیں دے سکتے, آپ بڑے رحمان رحیم ہیں.
Because when he does that, it doesn't leave too much leeway to show the expression of rahmah that Allah Subhanahu wa Taala has.
وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک رحم متاثر ہو جانے کی وجہ سے نہیں کرتے, اور غصہ متاثر ہو جانے کی وجہ سے نہیں کرتے, تاثر سے اللہ پاک پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
Because Allah Subhanahu wa Taala does not show mercy because he is influenced by other people. He's not, his anger because he's influenced by other people. Because Allah Subhanahu wa Taala is free from any influence.
جس پر رحم کرنا ہوتا ہے ارادے سے فرماتے ہیں, ذاتے سے فرماتے ہیں, ان کے منشے سے فرماتے ہیں.
And so whoever Allah Subhanahu wa Taala wants to show mercy upon, he does this by his own intention.
اور اگر غصہ کرنا ہوتا ہے تو جو بھی سزا دیتے ہیں وہ غصے میں آ کے نہیں دیتے, جیسے انسان غصے میں آ جاتا ہے. اللہ پاک متاثر ہونے سے پاک, تو جب ناراض ہوتے ہیں سزا کا فیصلہ فرماتے ہیں, سزا دیتے ہیں. جب سزا ہوگی تو اس وقت رحم بیچ میں نہیں آتا ہوں. جب رحم فرماتے ہیں تو غصہ بیچ میں نہیں آتا.
And when Allah Subhanahu wa Taala expresses His anger, He doesn't express His anger because it's a reaction to somebody's action. And you know, we show a reaction that we get angry because someone has done something. No, because Allah Subhanahu wa Taala is free from any reaction to other people. Because He does this out of His own wisdom. So if He is angry at somebody, He is showing His displeasure. And if He is happy with somebody, He is showing His pleasure with that somebody. So to have an exit way mercy in an ayat of anger, that is a sign that he's being influenced by something. That Allah Subhanahu wa Taala is free from any influence.
इसलिए उसको बयान करवाने के बाद कि यामत में अगर तुम्हारा तुम्हारे बीवी बच्चों का नुकसान हो गया तो मैं डरा दे रहा हूँ, अभी से डर जाओ.
That's why Allah Subhanahu wa Taala said, look, if you find that you are in loss in the life hereafter, you and your wife and your children, then don't blame me. That's why I'm warning you now. Pay attention now.
جہنم سے بچنا میرے دوستو سب سے بڑی کامیابی.
So freedom from the fire of hell, that is the biggest success.
ہم بھی اور ہمارے بیوی بچے بھی.
Us and our families.
اور ساری انسانیت.
And all of mankind.
Especially سارے مسلمان.
Especially all Muslims.
اور جنت مل جانا سب سے بڑی کامیابی.
And the attainment of paradise, that is the big success.
اور اصل مسلمان کے سامنے آخرت ہے.
Because the primary objective of a Muslim is the life hereafter.
اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں کام لگائے ہیں ایز اے مسلم.
That's why Allah Subhanahu gave us certain responsibilities as a Muslim.
بہت سے کاموں کو ہم جانتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں.
And many we understand and many we do.
اور بہت سے کاموں کو ہم جانتے بھی نہیں تو کرتے بھی نہیں.
So many we don't understand, that's why we don't do.
اور بہت سے کاموں کو ہم جانتے ہیں, ہمارے علم میں آتی رہتی ہیں وہ چیزیں, لیکن جو اس کی اہمیت دل میں بیٹھنی چاہیے اور اس کو جیسے لینا چاہیے ویسے لے لیتے ہیں.
And many, sometimes we understand and we hear, but because we don't understand the reality of their importance, we don't act upon them as much as we should.
Uska jo fayda hai wo sahi maana mein dhyan mein nahi hai.
Because we don't understand the value of their benefit.
Uske jo nataij hai wo dhyan mein nahi hai.
Because we don't understand the result of that action.
Aur agar usme nuksan ho gaya, us kaam se reh gaye hum, to usme jo nuksan hai wo nuksan dhyan mein nahi hai.
And if we are devoid of that action, we don't realize the ramifications of that action.
اگر وہ ذہن میں ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک بات کو جانے اس کے نفع و نقصان کو بھی جانے پھر اسے ہم سستی کر جائیں, یہ نہیں ہوتا.
Because if we really knew, then we would not stay back from certain actions knowingly that there is so much benefit in certain actions.
بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نفع و نقصان کو بھی جانتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں صحیح اینالائز نہیں کر پاتے.
And sometimes we know certain actions, but in order to fulfill that action, we are influenced by the hindrances that are in the way.
Usko baat bata aur manage karne nahi aata.
We don't know how to manage those impediments.
Un aham tareen kaamon mein se jo bahaisiyat musalman hone ke hum sab ke zimme hai.
And one of those important actions that is enjoined upon all of us,
वो है अल्लाह के रास्ते में फिरना, दीन की मेहनत को लेकर.
Is to go around and go in the path of Allah with the effort of deen.
और अल्लाह के रास्ते में फिरने वालों की मदद करना.
And to help those who are in the path of Allah.
कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह को जो ईमान लाए और उसके बाद में अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में निकले और वो लोग जो उनकी मदद की है, उनको ठिकाना दिए और उनकी मदद की है, ये दोनों वाकईतन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं.
In the Quran, Allah SWT says, those who believe and those who strive in the path of Allah SWT with their wealth and their time, and those who help those and give solace to those who are in the path of Allah SWT, those are the true believers.
एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही है सच्चे ईमान वाले.
He said, those are the true believers.
मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए से ये जिम्मेदारी बताई गई.
And so through different words, these responsibilities have been displayed to us.
ये एक जगह पर फरमाया उलाई का यर्जून रहमत अल्लाह, ये वही यही ये लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं.
In one place he said that these are the people who can be hopeful of the mercy of Allah SWT.
इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर दुआ करें कि अल्लाह हम पर रहम फरमा रहम फरमा रहम फरमा, तो इस रहमत के उम्मीदवार हैं या नहीं वो भी देखना होता है.
Recently, sometimes we make dua, Ya Allah, please have mercy upon me, please have mercy upon me, please have mercy upon me. But if we're not fulfilling the conditions to get the mercy of Allah SWT, then we're just killing ourselves.
अब अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग जानुमार को लेकर अल्लाह के रास्ते में गिरेंगे और जो उनको ठिकाना देंगे मदद करेंगे, ये हैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखने वाले.
And that's the reference to that ayah, that those who go in the path of Allah SWT with their time and energy, and those who help those who go in the path of Allah SWT, those are the people who can hope for the mercy of Allah SWT.
अब अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, और जिम्मेदारियों में से ये भी एक जिम्मेदारी है.
Now we can realize this is one of the major responsibilities that we have amongst other responsibilities.
और इस जिम्मेदारी को अल्लाह पाक ने ईमान वाले मर्दों के साथ और ईमान वाली औरतों के साथ अलग से स्पेशल बयान किया.
And Allah SWT explained this specifically for the mu'min men and the believing men and the believing women.
मुसलमान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह पाक मर्दों को हुक्म देता है, औरतें उसमें शामिल हो जाती है, इंक्लूड हो जाती
है. But oftentimes, as rule of the Quran, Allah SWT mentioned a specific task and he mentioned it for the men. And we assume that the ladies are all included.
जैसे अकीमु सला, नमाज कायम करो.
For example, establish prayer.
अकीमु ग्रामर के एतबार से मर्दों को खिताब है.
Secondly, to look at the Arabic grammar, it says, oh, you men establish prayer.
मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि औरतों को नहीं है.
But that doesn't mean the ladies should not establish prayer.
औरतों को बदरज वाला है.
But they should definitely do it.
बदरज वाला.
हाँ,
मतलब ये है कि जब मर्दों को है तो तुमको तो काफी एक्सेप्शन होगा, तुमको तो पढ़ना ही पढ़ना है. मगर उसमें उनके लिए अलग से सेवा नहीं है.
बट दे आर नॉट एड्रेस्ड स्पेसिफिकली सेपरेटली फॉर द लेडीज.
मगर जहाँ दीन की मेहनत का जिक्र है वहाँ अलग अलग है.
बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एफर्ट ऑफ दीन, दे आर एड्रेस्ड स्पेसिफिकली.
वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बादुहुम औलिया बाद, यअमुरूना बिलमारूफ वयनहूना अनिल मुनकर.
The believing men and the believing ladies, they are the true believers. They help each other.
और हमारे बीमारों करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं.
They enjoin the good and forbid the evil.
वयुकीमुना सलाह वयुतूना ज़कात.
And they establish prayer and they give donations.
वयुतीउना अल्लाह व रसूला.
And they obey Allah SWT and His Messenger.
उलाइका सयरहमुहुम अल्लाह, यहाँ पर भी आ गया ये. ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा.
So these are the people that Allah will have blessings upon.
आयत में भी आया था, यहाँ पर भी है.
In both ayats, talking about these are the people that have mercy upon.
अच्छा, अजीब बात यह है कि इसके बरखिलाफ भी जब मुनाफिकीन का जिक्र इस सेंस में आया तो वहाँ पर भी मर्दों और औरतों का अलग अलग मुस्तकिल बयान है.
And by contrast, we see what Allah was referring to the hypocrites, He's also referring to them specifically, men and the women.
وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
The hypocrite men and the hypocrite women, they help each other.
يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, उल्टा करते हैं.
They enjoin the bad and they forbid the good.
जो नहीं करने वाले काम हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, उनकी बात चलाते हैं.
The things that we shouldn't be doing, they're encouraging people to do.
और जो अल्लाह को नाराज करने वाली बातें हैं, उनकी बात चलाते हैं. जो अल्लाह को राजी करने वाली चीजें, उनसे रोकते हैं.
And those that please Allah SWT, they forbid people from doing.
भैया बिलोन आई थी हम, वो अपने हाथों को बंद रखते हैं, खर्च नहीं करते.
And they hold back their hands, meaning they don't spend in the path of Allah.
नसुल्लाह, उन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फिर नसीहुम, अल्लाह ने उनको बुला दिया.
अल्लाह. जिस प्रकार अल्लाह उसको माफ कर देता है
जैसे हम अनफसहुम अल्लाह पाक ने उनको उनकी जानों से बुला दिया
एंड इट इज सेड अल्लाह फदर मेड देम फॉरगेट देमसेल्व्स
यानी वो अपने ही नुकसान कर रहे हैं उसका उनको ध्यान नहीं रहा
बिकॉज दे डोंट रियलाइज दैट दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स
उलाइक हुमुल फासिकून ये लोग फासिक होते हैं
दीज आर द ट्रांसग्रेसर्स
वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्मों से निकलने वाले हैं
The first category were those who Allah had mercy upon them. The second category are those who were the transgressors.
So, हमारी जिम्मेदारियों में से मेरे दोस्तों ये भी एक जिम्मेदारी है.
So, from amongst our responsibility, this is a responsibility.
इसके बेशुमार मकासिद हैं.
And there's many purpose behind it.
और इसमें मसलहतें हैं.
And many delicacies that are involved.
और फायदे हैं उम्मत के पूरे.
And many benefits for the ummah.
क्योंकि बाजे काम ऐसे होते हैं कि उनको मरकजी हैसियत हासिल होती है.
And some actually are such that they have a very important status.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرفوضات میں یہ ہے کہ دین کی محنت جو ہے یہ پانی کی طرح ہے درخت کے لیے.
The Mawlana Yasir Rahimahullah, they say about him that this effort of deen is as if water is to a plant.
درخت کی جڑ کے لیے بھی مضبوطی کا سامان پانی ہے.
Because water provides the strength to the roots.
اس کی برانچز کے لیے بھی مضبوطی کا سامان پانی ہی ہے.
And it provides strength to the branches.
اس کے پتے نکلنے کے لیے بھی پانی ہی کا سامان ہے.
And through its nutrition, you know, the leaves come out.
اس پر پھول آنے کے لیے بھی پانی ہی کا کام ہے.
And to bring out the flowers, it's the water is the key.
اور اس پر پھل آنے کے لیے بھی پانی ہی کا کام ہے.
And to produce fruit, water does that.
اور پتوں سے برانچز سے بھر کے سایہ فکن ہو جانے کے لیے سایہ دار بن جانے کے لیے یہ بھی پانی کا ہی کام ہے.
And to create shade because of the thickness of the branches, that's also a result of the water.
جب دین کی محنت امت کرتی ہے تو اللہ پاک اسلام کے درخت کو پھلنے پھولنے کا سامان فراہم کر دیتے ہیں.
When we see the effort of deen, then we see the branches and the fruits of deen coming out.
پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہونا آسان ہو جاتا ہے.
And through this we see the needs of deen being fulfilled.
خود اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی
ہیں. Because the roots are strong.
خود اس کا تنا موٹا تازہ فربا ہو جاتا ہے.
Because the trunk is strong.
پھر اس کی شاخیں بے شمار نکل آتی ہیں.
And many branches come out.
اور پھر اس طریقے سے ہر تقاضا جو اسلام میں مسلمانوں میں پیش آئے گا اس کو پورا کرنے کی شکلیں اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے.
And it makes it easier to fulfill the other needs of being that arise.
اور پھل آتے ہیں پھر.
And we see fruits.
ظاہر ہے کہ ساری دنیا اس سے سیراب ہوتی ہے.
And through these fruits the whole world benefits.
اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان والے کی مثال ایسے پھل دار درخت کی ہے جو پھل ہمیشہ پھل دیتا ہوں
کبھی
سمجھ ہمیشہ پھل دیتا ہوں
کبھی سماج پر سوبھا سے The example of a mu'min is that of a tree that always gives fruit.
حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سا درخت ہے وہ
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم asked the sahaba kiram tell me what type of fruit is that
Abdullah ibn Umar کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا تھا
Abdullah ibn Umar was a young sahabi said I thought of this
میں ادب میں خاموش رہا
but I stayed quiet out of respect
بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا
the older sahabi said they said
حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم said it's a date tree
ایمان والا کیونکہ کھجور کا درخت زندگی بھر سینکڑوں سالوں تک پھل دیتے رہتا ہے
بیکاز اے ڈے ٹری گیوز یو نو گیوز فروٹس فار مینی ایئرز
حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے بعد میں فرمایا کہ میرے ذہن میں آیا تھا لیکن میں بولا نہیں
تو عبداللہ بن عمر told his father حضرت عمر that you know I thought of the answer but I didn't tell you
اور فرمایا کہ اگر تو بول دیتا تو میں کتنا خوش ہو جاتا اور میرے نمبر بن جاتے وہاں سے بھائی میرا بیٹا ایسا ہے وہ ان کے دور تو میرے لیے بول دیتا تو میرے لیے اس سے بہتر تھا کہ مجھے دنیا میں یہ مل جاتا یعنی ایک بہترین موقع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبوبیت بڑھانے کا انہیں وہ کھو دیا
So he told me, oh, you should have said something because then I would have been proud. Look, my son is you know, special. He said something very special.
So iman wala to phaldar darakht hai.
So a believer is a fruitful tree.
Aur phaldar bhi aisa phaldar darakht hai ki jo hamesha phal deta hai.
And such a tree that always gives fruit.
So isliye jab iman ki jadein mazboot hoti hain mere dosto, Islam ki jadein mazboot hoti hain, to phir sari cheezon ko fayda pahunchta hai.
So when the roots are strong, then everyone benefits.
اور جب یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ سکڑنا اور سمٹنا اور سوکھنا شروع ہو جاتا ہے
but when we lack this effort that everything is we lose everything dries up
پوری دنیا میں امت مسلمہ میں اسلام سکڑ رہا ہے
today we see throughout the world اسلام is drying up
سمٹ رہا ہے
it's shrinking
سوکھ رہا ہے
it's drying
بے پھل ہو رہا ہے
نو without any fruits
تو اس میں پانی نہیں جا رہا
بیکاز there's no water
اس لیے احکام بہت سے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں
there's many commandments
بعض کی بعض پر فضیلت بھی ہے
and many have preferences over the other. Many have special categories. But this effort is so special because it has a foundational effect on the ummah.
That's why
Allah subhanahu wa ta'ala enjoined this responsibility on every Muslim.
اور پوری پورے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حیثیت سے ذمہ داری دی ہے کہ ہم اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
Because he gave this in such a way that we are the representatives of Allah سبحانہ وتعالی on this planet.
اللہ وَيُقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
This is Allah سبحانہ وتعالی. When Allah سبحانہ وتعالی told the angels, look, I'm making a khalifa, I'm making a representative on this planet.
خلیفہ وہ کام کرتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے.
So the khalifa does that work which was the base does, the real thing does.
پوری دنیا میں اللہ کے اوامر کو نافذ کرنا.
We have to enforce the commandments of Allah Taala throughout the world.
اللہ کی مرضی چلانا.
And to fulfill His will.
اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا.
And to revive His commandments.
اور اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک کے لیے جان و مال کو قربان کر دینا.
And in order to revive His commandments, to sacrifice our time and energy.
جتنا مال لگ جائے اس کو سعادت سمجھنا.
And whatever wealth we give, we consider that an honor.
جتنا وقت لگ جائے اس کو سعادت سمجھ.
Whatever time we give, we consider that an honor.
اور اگر پوری زندگی لگ جائے تو اس سے بڑا لکی پرسن تو کوئی نہیں.
And if given our whole life, who can be more lucky than that?
جب حضرات صحابہ اللہ کے نام پہ جان دے رہے ہوتے تھے تب ان کی زبان سے نکلتا تھا خوش تو رب کعبہ.
When the Sahaba used to give their lives, they would say, I am successful, I swear by the Lord of the Kaaba.
جب مر رہے ہیں تو پھر کیسے رب کعبہ کی قسم کے میں کامیاب ہوں.
But they die, how can they be successful?
بات اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو میک شیور یعنی شیورلی یہ بات طے ہو گئی کہ اس کی جان اللہ ہی کے لیے گئی, کسی اور کام کے لیے نہیں گئی.
Because it certifies, it stands, so when he's dying, he's giving his life to the sake of Allah.
ورنہ تو پھر یہ اندیشہ لگے رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا بعد میں.
Because you never know, you're always in doubt what's going to happen when I die.
کن حالات میں زندگی جائے گی.
How will I die?
کن اعمال کی مشغولیت میں جائے گی.
And how will you doing what action will I die?
لیکن جب وہ اپنی موت کا یقین کر لیتے تھے اللہ کے راستے میں تو ان کی زبان سے نکلتا تھا خوش تو رب کعبہ.
But when they were certain that they were giving their life in the path of Allah, they said, yes, I swear I'm successful.
اس لیے تو ہم جس چیز کو ہم نمائند جس کے نمائندہ ہیں سب سے پہلے اس کو اپنے دل میں بھرنا ہوتا ہے.
So those who we are representing have to put him in our hearts.
ہمیں پتا ہو کہ ہم جس اللہ کے بندے ہیں اور جس اللہ کی نمائندگی ساری انسانیت میں کر رہے ہیں وہ اللہ ہے کیسا.
We have to first recognize who we are the slaves of so that we can introduce him to others.
اس لیے دین کی محنت میں اللہ پاک سے ہونے کو سب سے پہلے سنا بولا جاتا ہے.
That's why the foundation, the effort of deen is to talk about the greatness of Allah Ta'ala.
Allah تبارک و تعالی کی ربوبیت کا مذاکرہ ہوتا ہے.
To remind ourselves of his provision that he is the provider.
اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والے ہیں یہ انسانوں پر کھلنا ضروری ہے. میں مجھ پر اور آپ پر ساری انسانیت.
And that only and only he does everything that we have to explain to ourselves and to others.
اسباب کی تاثیر اسباب کا مؤثر ہونا یہ نکالنا ہوتا ہے اپنے اندر سے.
And to take out the effects of the worldly things.
جتنے اسباب دنیا میں ہیں ان میں سے کوئی بھی مؤثر نہیں.
Whatever means there are in this world, nothing can do anything.
کسی بھی لحاظ سے.
In any way.
مؤثر اللہ پاک کی ذات ہے.
The only doer in reality is Allah سبحانہ وتعالی.
پورے اسباب ایسے ہی ہیں جیسے کچن کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں.
اسباب can be given example as pots in the kitchen.
اس میں کچھ نہیں ہوتا.
You can't do anything.
جب آپ نیا نیا کچن بنا کے سب بہت سا سامان اس میں لاتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا.
When you make a new kitchen, you put new pots, they're empty. There's nothing in there.
اور ہر ایک کے نام ہوتے ہیں.
Every pot has a name.
یہ شکر کا برتن ہے, یہ نمک کا برتن ہے, یہ مرچی ہلدی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, گرم مسالے کا ہے, آٹے کا ہے, چاول کا ہے.
But that's just pots, you know, the utensils. You know, say, this is for salt, this is for pepper, this is for sugar. You know, you label them.
مگر جس جو نام ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے وہی چیز نکلے گی.
But it's not really that you label something sugar and you'll be sugar inside.
اگر آپ نے شوگر کے برتن کے اندر نمک ڈال دیا تو کیا نکلے گا؟
If you put salt in a sugar can, what's going to come out? Salt.
آپ یہی بولیں گے کہ ارے یار وہ نمک ڈال میں شکر ڈالا تھا ڈالا.
I put the salt in the sugar and then the salt in the shaker to bring that to me.
پورے برتنوں میں جو اللہ ڈالیں گے وہ نکلے گا.
Whatever Allah puts in them, that's what will come out.
چاہے نفع کا نام ہو اس کا چاہے نقصان کا نام ہو.
Whether it's benefit or whether it's harm.
نفع والی شکلیں جتنی دنیا میں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں ان تمام شکلوں میں سے نفع جب ہی نکلے گا جب اللہ پاک اس میں نفع ڈالیں گے.
Whatever apparent means there are of success, only success will come out if Allah puts success in them.
اور جن جو نقصان والی شکلیں ہیں ان میں سے بھی نقصان جب ہی نکلے گا جب اللہ اس میں سے نقصان نکالیں گے.
And the apparent signs of loss and harm would only come out if and only if Allah SWT would harm them.
नफ़े वाली शक्ल के अंदर वो नुकसान डाल दे तो फिर नुकसान ही निकलेगा, नफ़ा नहीं निकलेगा. महज इस वजह से कि उसका नाम नफ़ा वाली चीज़ है.
If Allah SWT wants to put harm in a shape of would design that's beneficial, you're going to get harm because Allah is going to put harm in there, even though design says it's beneficial to us. For example, wife and kids, these are the signs of success and benefit for
money.
But not necessarily. We see by our own eyes. Money is a sign of benefit. But not necessarily you see benefit from it. We see house, cars, these are all things that we see that have apparent benefits. But we see how many times we see loss in these apparent signs of benefits. How many people die under the cars every day? The car harmed him. Even a bazaar in the car is a form of benefit. How many people drown every day? But water is a source of benefit.
कितने लोग माल की वजह से राबर्ड किए जाते हैं फिर उनको शूट भी कर दिया जाता है.
Many people are mugged and robbed and murdered because of their wealth.
बाजू में फकीर बैठा हुआ होता है जिसके उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई भी राबर नहीं गया.
And right next to him there's a beggar, nobody attacks the beggar.
जो माल दाता उसी को पकड़ा उसने.
The person who has the money, he's the one that gets
attacked. कहां से निकला है?
So where was the harm?
माल में अल्लाह पाक ने नुकसान डाला.
Allah SWT put harm in the wealth. So to put success in the apparent harm, that's Allah can do that. And to put harm in the form of apparent success, Allah
can do that.
We to defy and deny any means. The effects of these means.
So Allah Pak ne ye cheeze banayi.
Allah has created these things. But their effect is not inherent in them. There was a big da'i on Muhammad Palanpuri
Ramsullah.
You see an example. One somebody was very tired of his life. He wanted to commit suicide.
पहले उसके
ज़हन
में आया कि मैं क्या करूँ.
He said, what should I do?
उसने सोचा कि मैं जहर खाऊं. फिर उसके जहन में आया कि अगर जहर मैं खाया और पूरी तरह अंदर काम नहीं किया, उसने लोगों ने देख लिया, मुझे दवाखाने में सर्जरी कर दी, उसको निकाल दिया तो मैं मरूंगा नहीं,
बचाऊंगा. But if it doesn't take effect immediately, somebody's going to call the police or the ambulance and take me to the hospital, I'll get saved and I won't be successful in my attempt.
उसने सोचा कि मैं गोली मारूं.
Okay, let me shoot myself.
फिर उसके जहन में बात आई कि अगर गोली आए वक्त पे चली नहीं, बात वक्त इसका हो जाती ना, या ये कि रंग निकल गई और आवाज आ गई और लोग पहुंच गए तो फिर मैं बच जाऊंगा मरने से.
So then he thought to me, what if I misfire, or what if it doesn't work, or what if I shoot wrong, and it doesn't work again, and somebody hears the pop and somebody comes to save me, then it's not going to work again.
उसके बाद उसने सोचा कि मैं फांसी ले लूं.
So I'm going to hang myself.
फिर सोचा कि बाद वक्त फांसी में भी आदमी बच जाता है, तो मैं ऐसी जगह फांसी लूं कि पानी के ऊपर हो, ताकि अगर मैं गिर भी जाऊं उसे रस्सी टूट के तो पानी में गिरूं और डूब के मर जाऊं.
So he was thinking, okay, let me try to hang myself in a big pot of water. So even if I don't hang, inshallah, even if I fall, and if the rope breaks, I'll fall in the water and then I'll drown.
तो उसने जहर भी खरीदा.
So and he bought the poison.
उसने रिवॉल्वर भी खरीदा.
And he bought the gun.
उसने रस्सी भी ली.
And the rope.
फिर उसके बाद गया एक ऐसी जगह पर जहाँ पे दरख्त की एक टहनी पानी के ऊपर आ रही थी.
So he found a place where there was a branch on top of a river.
उसमें उस टहनी पर उसने रस्सी लगाई.
And he found the rope on that branch.
उसके बाद वो चढ़ के गया उसमें.
And he climbed up to it.
और अपनी रस्सी गले में डाल लिया.
And he put the rope on.
और उसके बाद जो है उसने जहर की पूरी अपने मुंह में डाली.
And he drank the poison.
और झूल गया.
And he jumped.
और झूल के शूट कर दिया.
And he tried to shoot himself.
तो जहर भी खा लिया.
He had taken the poison.
गोली भी मार दी.
And he shot himself.
और लटक भी गया.
And he hung himself.
और पानी पे आया लटक के.
And he's on the water.
खुदा की करनी है कि जब ये काम वो करा तो उसमें से आगे पीछे जो भी हुआ उसकी गोली जाके रस्सी को लगी.
Allah SWT decreed such that when he shot the revolver, the bullet hit the rope.
और जहर भी वो खा चुका था
and he had taken the poison.
रस्सी टूट के सीधा पानी में गिरा
but when he shot the rope he went straight in the water.
जैसे वो पानी में गिरा तो जोर से आवाज आई
so there was a big noise, a big splash.
बाजू वाले खेत में काम कर रहे थे
there were people working in the farm.
जैसे उन्होंने आवाज सुनी उन्होंने देखा क्या हुआ
when they heard the noise, they ran to see
अरे एक आदमी डूब रहा है सारे कूदके उसको निकाले
oh, what happened? Somebody drowned, let's save him.
वो जब तक बहुत पानी पी चुका था
but by then he already drank
but the उसका पेट को दबाया तो पानी निकला
so when they pushed his water, they pushed his stomach, the water came
out. जहर भी निकला
and the poison came out.
बड़ा चंगा खड़ा हो गया तो मौत के इतने अस्पताल जमा होने के बावजूद भी अगर अल्लाह बचाना चाहेंगे तो आदमी बच के रहेगा
इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मींस ऑफ डेथ इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेव समबडी अल्लाह विल सेव
और जितने ही अस्पताल हिफाजत के कदर है अगर अल्लाह पकड़ना चाहे तो पकड़ा जाएगा
एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दी मींस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अल्लाह वांट्स टू अल्लाह विल कैच
हमारे अल्लाह इससे कुदरत वाले वो जब चाहे जो चाहे करे
यू कैन डू व्हाटएवर व्हाटएवर
जिसके साथ चाहे करे
टू हूएवर
जैसा चाहे करे
व्हाटएवर यू वांट
वो अगर चाहे तो पूरी मखलूकात को पूरी कायनात को एक सेकंड में तबाह बर्बाद कर दे
इफ यू वांट यू कैन डिस्ट्रॉय द होल क्रिएशन इन वन सेकंड
और अगर वो चाहे तो ऐसे हजारों एक सेकंड में पैदा कर दे
एंड इफ यू वांट एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्रिएशन thousands like us in one second.
ये कुदरत को कोई कैद लिमिट नहीं
There's no limits to his power.
वो कादिर मुतलक है
He is the almighty.
वो फ़ाल लिमा युरीद है
Do whatever he wants.
वो यहकुमु मा यशा की शान
रखे He does, he's the authority of everyone.
ला युजिज़ुहु अहदुन की शान है
No, no one can, you know, can make him, can foil him.
ला युग़लिबुहु अहदुन की शान है
No one can be dominant upon him.
वो ऐसे पालने वाले हैं
He is the provider.
तो वो पालने में असबाब के पाबंद नहीं
है He is not in need of any means for
किसी भी सबब में असर नहीं है
There's no effect in any means.
वो असर अल्लाह पाक है
The actual doer is Allah SWT.
हर सबब में अल्लाह ने हुक्म लगाया है
And in every means Allah has put a commandment.
हर हुक्म पर वादा फरमाया है
And in that commandment he's put a promise.
तो करने वाले अल्लाह हैं
The doer is Allah.
करते अपने वादे के
And Allah does according to his promise.
वादा अपना हुक्म के साथ जोड़ा है
And he's connected his promise with his commandment.
हुक्म असबाब में डाला है
And he's put the commandment
so
with the
पूरे इस्बाब के अंदर अल्लाह का हुक्म असल है
So the actual, the primary motive is the commandment.
जब इंसान अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा
When Allah fulfills his commandments, Allah will make success.
अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा
Allah will protect him.
अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से भी हिफाजत
Allah will protect him from his enemies.
मसाइब से भी हिफाजत करेगा
From problems.
आखिरत के अजाब से भी बचाएगा
From the punishment of the
जहन्नम से भी बचाएगा
From the fire of hell.
अल्लाह पाक मेरे दोस्त को हिफाजत फरमाने वाला
Allah is the protector.
अल्लाह पालने वाला है
Allah is the provider.
रब अल्लाह है
He is the one.
आदमी के पास सामान हो या ना हो
Whether we have the means or not.
सांस के बगैर आदमी नहीं पड़ता
say we can't survive without breathing
lekin bagair saans ke bhi wo palte hi rehte
but Allah can provide even without breathing
jab aadmi ke paas phepda hi nahi to nahi to saans kaise lega
so it doesn't have any lungs half of
phepda karne se pehle bhi to jaan hoti hai
so before we had lungs we had not
Allah pak ne Allah pak ne Allah pak kisi cheez se pabandi nahi
Allah is not you know defined by anything
तो ये इस बात का यकीन काम करने वाले को होना जरूरी होता है ईमान वाले को होना जरूरी होता है कि यकीन की बुनियाद पर आदमी उठने के काबिल हो
जाए
जब अल्लाह पाक हिफाजत करने पर आते हैं तो अंबिया के ईमान की हिफाजत फरमाई मकड़ी के जाले
से
जब अल्लाह पाक पकड़ने पर आते हैं तो बड़े बड़े बादशाहों को पूरे पूरी जमीन का जो सबसे बड़ा बादशाह था उसको मच्छर से मार दिया
एंड अल्लाह फादर वांट्स टू होल्ड समबडी अकाउंटेबल ही कैन होल्ड द किंग ऑफ द वर्ल्ड बाय जस्ट अ मॉस्किटो
चार लोग हैं जिनको पूरी दुनिया पर बादशाह थी
देयर फोर पीपल हु वर द किंग ऑफ द वर्ल्ड
उसमें से एक नमरूद भी था
व्हाट वाज नमरूद
उसकी मौत मच्छर से हुई
ही डाइड बाय मॉस्किटो
जब वो पकड़ने पर आए तो पूरी दुनिया के बादशाह को मच्छर से मार दिया
इफ यू वांट टू बी किल्ड द किंग ऑफ द वर्ल्ड बाय मॉस्किटो
जब वो बचाने पर आए तो पूरी दुनिया के सरदार कायनात के सरदार को मकड़ी के जाले से बचा
इफ यू वांट टू सेव somebody he can save them with this mosquito with the spider web please can you please move closer there's many birds sitting outside
yahan pe garmi bol rahi hai aur kya raha hai baazu baaz bahar baazu baaz se chal rahi hai haath here aur jaane ke liye humko bhag jate shuru kiya majma bahut khali ho jata hai
there is space please you move up a little bit or if not there's space in the downstairs in the basement or if you see an empty space there's space here on this side there's someone just move up a little bit I'm not asking you to be too tight but if you see that space you can move up a little bit
mere dosto hamara aur aapka jo asli kaam hai wo hai allah اللہ کی ذات عالی کا یقین بنانے کا.
My dear brothers, our primary responsibility is to have yaqeen in Allah.
پوری دنیا کے مسلمانوں کو حالات سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر بنے.
And the only success for everybody to get out of any problems is to have yaqeen in Allah.
بہت مال جمع ہو جائے مسلمانوں کے پاس اس سے مسلمان حالات سے نہیں نکلے گا.
If Muslims accumulate a lot of wealth, that's not going to solve their problems.
اگر بہت زیادہ علم دنیا کا مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس سے مسلمان حالات سے نہیں نکلے گا.
If they have a lot of worldly knowledge, that's not going to solve their problems.
علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس بہت سارا دین کا علم بھی جمع ہو جائے لیکن ان کا یقین بنا ہوا نہ ہو پھر بھی یہ مسلمان حالات سے نہیں نکلے گا.
And the علماء have written, even if they have a lot of deeni knowledge, but their yaqeen is on the mukhluq, that's not going to solve the problem.
حالات سے نکلنے کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کی اور کوئی شکل نہیں.
Freedom from any problems is to have yaqeen on Allah.
جب اللہ کا یقین ہوتا ہے تو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے.
When we have yaqeen on Allah, we rely on Allah.
اور جو من يتوکل علی اللہ فهو حسبه.
And whoever relies on Allah, he's enough for him.
علی صلی اللہ علیہ وسلم بکافی عبدہ اللہ پاک فرما رہے ہیں.
Isn't Allah enough for you?
اب اللہ پاک جب یہ سوال کر رہے تھے آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا زیادہ غیرت کی بات دلائی ہے. اللہ تجھے بس نہیں ہے تو پھر کون بسے یہ بتا. اللہ کے ساتھ اچھا گمان جب بھی ہو سکتا ہے جب یقین صحیح بنا ہوا. بندہ اللہ کے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے اللہ پاک ویسے معاملہ کرتے ہیں.
Our expectations with him are, you know, he responds as our expectations with him.
اگر بندے کا یہ یقین بن جائے کہ 12 مہینے ملازمت کرے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا تو 12 مہینے ملازمت کرنے کی پابندی اس کے سر پہ آ جاتی ہے.
If our belief is that I can't survive, I can't live without working 12 months of the year, then that's what's going to happen.
اور اگر اس کا گمان اللہ پاک کے ساتھ ایسا اچھا ہو جائے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ 4 مہینے کی کمائی میں 12 مہینے کی برکت دے دے وہ دے دے گا.
But if he, someone has the yaqeen that Allah will make me survive on the earning of 4 months, will they be enough for my 12 months, Allah will do it.
اور اللہ پاک دکھا رہے ہیں سب.
Allah is showing this to us.
اور دکھاتا ہے اللہ پاک.
کیونکہ
پالنے کے لیے نوکری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی.
Because to give provisions, a job is not necessary.
وہ تو کسی کو بھی اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ بغیر پڑھے لکھے کے آدمی بہت سے ایسے لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے جو بہت پڑھے لکھے ہیں.
Because many illiterate people hire people that are more educated than them.
بڑا نواب ایک بہت بڑے نواب صاحب کی ان کی بڑی فیکٹری تھی.
There was a big rich man who had a big factory.
ان کے پاس 19 جو ہے نا انجینئر کام کرتے تھے.
19 انجینئر ورکنگ فور ہم.
تو کوئی مسئلہ پیش ہو گیا ان کی کمپنی میں.
There was a problem in company.
ظاہر کہ 19 انجینئر ہوں گے تو ایک انجینئر کے نیچے کتنے کتنے مزدور ہوں گے.
And if these are 19 engineers, then each engineer had many laborers under them.
جب مقدمہ ہو گیا تو وکیل ہائر کیا گیا.
So when they went to court, they hired a lawyer.
جب وہ وکیل آیا ان کے پاس کہنے کے فارم ہے ان کے اوپر دستخط کرنا ہے.
So the lawyer went to the boss and said, you have to sign this.
تو اس نے کہا کہ مجھے دستخط کرنے کو نہیں آتا, انگوٹھا لے لو.
I don't know how to sign, just take my thumbprint.
تو وہ وکیل جو ہے وہ دیکھنے لگا نواب صاحب.
So the lawyer was surprised.
تیرے پاس 1900 انجینئر کام کرتے ہیں اور تو انگوٹھا چاہتا.
He said, you are mentioning engineers working for you and you don't know how to sign.
زبان سے نہیں بولا, آنکھوں سے بولا.
He didn't say that in words, he just thought it.
تو وہ سمجھ گیا.
So he understood.
تو اس نے کہا گھورتا کیا ہے مجھے, یہاں سے کھاتا ہوں, پیشانی سے قسمت سے کھاتا ہوں.
He said, why are you staring at me? He said, I eat from my forehead, meaning Allah has given me all this.
تو اللہ پاک جاہل سے جاہل کو بڑی فیکٹری کا مالک بنا کے اس کے تحت کتنے پڑھے لکھوں کو لگا دیتے ہیں.
Allah SWT can make the most ignorant people, illiterate people make the owners of factories with many illiterate people working.
وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ راستے نکال دیتا ہے.
Whoever relies on Allah SWT opens up the ways for them.
یقین کیسا ہے؟
It depends on our yaqeen.
اگر مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ترتیب بنائے تو اللہ پاک اس کے کھانے میں بھی برکت دیں گے, اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے, اس کے مال میں بھی برکت دیں گے, اس کی بیوی بچوں میں بھی برکت دیں گے اور خوشحالی والی زندگی ہوگی.
If someone relies on Allah SWT in order to fulfill that responsibility, then Allah SWT will put blessings in his home life, in his wife, in his children, in his earnings, all his life will have blessings because he relies on Allah SWT.
بیوی بچوں کے پالنے کے واسطے اتنی مشغولیت نہیں ہے جب اپنے ذمے ہم نے لگا لی ہے.
You know, in order to take care of a family, wife and children, we really don't have to be too busy.
ہم جب بیوی بچے رکھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہم پر ہے.
yes, we have their responsibility.
उसमें जो अल्लाह का हुक्म है वो तो पूरा करना ही करना है.
We have to fulfill the rights of Allah.
मगर उसकी तरतीबें हैं.
But there's a way to do it.
उसके तरीके कार हैं.
There's a method to do it.
हमने ऐसा किया है कि आंखें बंद करके जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनकी जिंदगी का जो प्रोग्राम है वैसे हमने अपने आप को उनमें ज्वाइन कर दिया.
We have blindly followed those who don't believe in Allah SWT. Whatever their way they live, we have followed their ways.
जैसा उनका यकीन मादे पर हमारा भी मादे पर.
Their belief is on the worldly things, that our belief is on worldly things.
जैसे उनका यकीन असबाब पर वैसे हमारा यकीन असबाब पर.
Their belief is on the means, that our belief is on the means.
जैसे उनका यकीन असबाब की तासीर का वैसे हमारा भी यकीन असबाब की तासीर का.
Their belief is on the effect of the means, that our belief is also on the effect of the means.
हमारे जहन में आ गया कि ये सबब से अल्लाह करेंगे, अल्लाह ही करेंगे, मगर करेंगे ये सबब से पाबंद है वो और इतने सबब से करेंगे.
And we enforce ourselves that yes, Allah can do it, but Allah can only do it through this way, and He can only do it in this way.
मेरे भाइयों ये बड़ा धोखा है जो मुसलमानों को लग गया.
That's a very big deception.
हम सब के सब इसमें मुब्तला हो गए.
All you know, culprits in this.
ये हदीस कुदसी है.
This is hadith कुदसी.
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि या दुनिया ये खदीमी मन खदमनी.
Well, Allah SWT is saying, you serve those who serve me.
वस्तखदीमी मन खदमनी. और तू गुलाम बना ले उनको जो तेरी खिदमत में लगे.
And you enslave those who work for you.
हमें ये भी डिसाइड करने नहीं आया है कि हम दुनिया के खादिम हैं या दुनिया हमारी खादिम है.
We haven't decided yet that are we serving the dunya or is dunya serving us.
उसका उसकी पहचान ये होती है.
How do we know what's the hand back in us?
अगर हमने उसकी खिदमत करते करते अपना टाइम पूरा किया और आखिरत के लिए कुछ नहीं किया.
Then if being involved in dunya, we finish our time, we have done anything for akhirah.
तो उसने हमसे काम ले लिया और हमें छोड़ दिया छिलका बना के.
सो द दुनिया हैज यूज्ड अस, वी हैव नॉट एनी.
दो शक्लें होती हैं, हम खादिम हैं दुनिया के या दुनिया खादिम है हमारी.
इट्स टू पॉसिबिलिटीज, आइदर वी आर सर्विंग द दुनिया और दुनिया सर्विंग अस.
वो हमारे ताबे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर लेके फायदा उठा लेके अपने मकसद में लगे हुए हैं तो बोले उससे हम काम ले रहे हैं.
That if it is under us, we're using it to serve us and save the deen, then we're using it. Otherwise, we are subservient to it.
और अगर वो हमें इस्तेमाल कर ले रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं सक रहे तो उसने हमें इस्तेमाल कर.
But if he is using us and the dunya is using us, then we have been fooled by dunya. We are into it.
यही मतलब है दुनिया के धोखा देने का.
That's what it means that the world is deceiving us.
अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन के हालात कुरान पाक में बयान फरमाए तो उसमें इसका जिक्र सराहतन फरमाया है.
And in the description of the characteristics of the munafiqeen, Allah SWT has given the specific description.
فرمایا کہ منافقین کو جو مال و دولت زیادہ مل گئی ہے اس میں آپ تعجب نہ فرمائیں.
He said that don't be impressed by the wealth given to the hypocrites.
انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا.
Allah SWT uses it, the wealth that the hypocrites have, to punish them in this world.
تو بڑے مزے میں ہیں وہ عذاب کام ہے.
But we apparently you see over there.
آپ جا کے ان کو پکڑیں گے پوچھیں گے تو پتا چلے گا وہ کس طرح کے عذاب.
But when you ask them and you talk to them, you realize what problems they have.
سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات زیادہ مالداروں میں ہی ہوتے ہیں.
The most prevalent suicides are in those who have a lot of wealth.
بے دینوں میں ہی ہوتے ہیں.
Those who don't have any deen.
دیندار آدمی کبھی خودکشی نہیں کرتا.
With the highest person doesn't commit suicide.
کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ یہاں خودکشی کروں گا تو وہاں اور خودکشی ہے.
They say he realized that if I commit suicide here, I will be punished there too.
अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, बदकर भी अगर चैन न पाया तो किधर जाएंगे.
Today we see, you know, say some people say, look, if worse comes worse, what will happen? I'll die. But if I can kill myself, then that even death is not a solace.
ईमान वाला कभी खुदकुशी नहीं करता.
If women will never commit suicide.
जितने खुदकुशी करते हैं बेईमान करते हैं.
Those who are commit suicide, they're not believers.
और बेईमानों में जो जितना ज्यादा माल और दौलत रखते हैं वो करते हैं.
And amongst the disbelievers, those who have a lot of wealth, they commit suicide.
और वो कर अब वो जब आप खुदकुशी पे आदमी जब आता है जब आजिज हो जाता है तंग हो जाता है.
And they reach the level of human suicide when they get into despair and they have no solution to their problems.
तो इसलिए अगर नहीं भी करा फिर भी परेशान रहता है.
That even if he doesn't commit suicide, he has a lot of
problems.
That's the interpretation of that Allah SWT wants to punish them through their wealth in this world.
तो आखिरत में तो है ही दुनिया में भी सजा होगी.
And yes, definitely in the hereafter they'll be punished. But here,
इसके बाद अल्लाह ने जो बात फरमाई है वो मेरे और आपको बहुत गौर से सुनेंगे और ज्यादा गौर से सुनेंगे.
What he said next, we should listen attentively.
फरमाया के बता क्या होता महूम काफिर उनकी जान निकल अल्लाह चाहता है कि उस माल दौलत की मजबूरियत में उनकी जान निकल जाए कुफर की हालत में ईमान लाने ईमान के ऊपर सोचने ईमान का काम करने का मौका न मिले ताकि कुफर पर मौत होने की वजह से डायरेक्ट जहन्नम में पहुंचा दिया जाए. अल्लाह ये चाहता है हमको मार दौलत देकर.
Describing the effect of wealth on the hypocrites, that you want to keep them so busy in their wealth that through this constant involvement in their wealth they lose sight of the hereafter and they die on kufr.
अगर दुनिया ने हमें भी ऐसे इस्तेमाल कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया कि हमको फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो फिर मेरे दोस्तों क्या हुआ, बात का मतलब क्या हुआ, दुनिया में हमें धोखा दिया ही दिया दुनिया.
So if we are so involved in the worldly things that we don't think about the life hereafter, then haven't we been deceived by dunya?
इसी वास्ते कुरान पाक में फरमाया फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया, धोखा न दे तुमको दुनिया की जिंदगी.
That's what Allah says in the Quran, don't let the world deceive you.
वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहि गरूर,
and don't let the primary deceiver deceive you.
तो दुनिया के धोखे में होता क्या है?
So how are you deceived by the world?
दुनिया के धोखे के अंदर जो तफसीलें लिखी गई हैं उसमें से एक बात यह है जो मैंने आपसे जिक्र की है.
One of the details is what we've just described.
क्योंकि इसमें आदमी समझ रहा कुछ होता है धोखे में क्या होता है, आदमी सब ये समझ के लेता है कि ये गोल्ड है और घर को जाने के बाद पता चला कि है तो ये वैसे ही इतना उस पर गोल्ड का पानी चढ़ा दिया था.
You know, what is it to be deceived? That you thinking you're buying gold, when you get home you see this gold covering the lid is just a rock.
कितने लोग हैं अगर उनके पैसे बहुत बन जाते हैं पढ़कर घंटे में $200 बना लेते हैं.
For example, many people earn like, for example, $200 an hour.
वो समझते हैं कि मैंने अपना वक्त कितना कीमती बनाया.
Say, oh, I made my time very valuable.
लोग समझते हैं कि किसने अपना वक्त कितना कीमती बनाया.
Oh, they use their time valuably.
उसके माँ बाप समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को मेहनत करके पढ़ा के लिखा के कितना कीमती बना दिया.
And the parents are thinking, oh, I've educated my son.
और ना नमाज का ना रोजे का.
But there's no idea
of दीन का ना दीन की मेहनत का.
Of being and the effort of deen.
मर गया.
And he died.
बताओ कीमती बना वो बंदा.
So is he precious or
उसका वक्त कीमती बना?
Was his time valuable or not?
एक मुसलमान का एक घंटा $200 का है, क्या तू कहेगा इस बात का?
You see, we you know, decimated the value of a time of Muslim from just $200.
ऐसे हजारों दुनियाएं आदमी खरीद लेता है एक घंटे में.
You know,
मुसलमान वो होता है.
A Muslim is he who can purchase thousands of worlds, similar to this in 1 hour.
Subhanallah, tamlak nisful mizan. Subhanallah, bolta hai aadmi aadha sawab, aadha padna sawab se bhar jata hai.
Subhanallah. Just by saying Subhanallah, the nisful mizan, half of the mizan is full.
Walhamdulillah, tamlakhu awqala tamlakhu ma bayna samai wal ard.
And just by saying Alhamdulillah, it finishes the other half or fills the gap between the skies and the earth.
Ek ghante ka waqt ek musalman ka itni badi investment hai अल्लाह की कंपनी में कि अगर वो लग गई और कबूल हो गई और कबूल हो ही जाती है नेक नियति से तो उसको कभी खसारा नहीं होता और हमेशा हमेशा के लिए फायदा मंद चीज उसको हासिल हो जाती है.
So 1 hour of the time for a Muslim is much more than $200. It's the means of the life hereafter for forever and forever.
Allah Subhanahu wa Taala ने मुसलमान को बहुत कीमती बनाया.
Allah Subhanahu wa Taala made a Muslim very precious.
Allah Pak ने इंसान को सबसे पहले बहुत कीमती बनाया.
First human is special.
फिर उसके बाद इस्लाम क्या कहने उसके.
And then if he's a Muslim.
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना तो मेरे दोस्तों और नूरुल आलम.
And then to be a member of the Ummat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
हम तो अपने अपनी कीमत ही नहीं समझ रहे.
We don't understand our value, my dear brother.
हम तो अपना अपनी जान और माल की वकात नहीं समझ पा रहे.
We don't understand the value of our time.
इसी वजह से हमारी जान और माल फजूल जगहों पर पूरी जिंदगी में जली जा रही है.
That's why our time and wealth is being wasted.
इस वजह से दुनिया हमें इस्तेमाल कर ले रही है.
That's why the world is using us.
और हम धोखा खा जा रहे.
And we're deceived.
और अल्लाह ने हमें फरमाया कि तुम्हें दुनिया में जिंदगी धोखा ना दे.
And Allah is warning us, don't be deceived by the world.
और ये भी फरमाया कि शैतान तुम्हें धोखा ना दे.
And he's saying, don't be deceived by शैतान.
हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को हमारे मुसख़्ख़र फरमाया.
We know that Allah has made the world to serve us.
आसमान और जमीन हमारे लिए है.
Skies and earth are for us.
चांद और सूरज हमारे लिए.
The sun and the moon are for us.
सितारे और कवाकिब शैवाब हमारे लिए.
The stars and the comets are for us.
हमारे लिए हवाएं चलती.
The winds run for us.
हमारे लिए पानी बरसता है.
The water falls for us.
हमारे लिए जमीन अपने खजाने उगलती है.
The earth brings out its treasures for us.
हमारे लिए पूरी कायनात खिदमत में लगी हुई है.
The whole world is for our service.
कुरान ने फरमाया सखर लकुम मा फी समावाति व मा फी अर्द.
That's what the Quran says, that we made subservient to you everything that's in the world of the skies and the earth.
तुम्हारी खिदमत के लिए ये सब चीजें.
For your service.
तुम इनके खादिम बनने में बढ़
गए. You become their
खादिम. तुम मेरी खिदमत में रहो.
You were made to serve me.
या दुनिया इस्लामी मरखदा बनी जो मेरा खादिम बने. ऐ दुनिया तू उसके गुलाम बन जा.
He who serves me, you become his servant.
वही वस्तक नहीं मां खदमा की जो तेरी खिदमत
But if you, someone, you know, someone you, then you, you, you know, you let them off.
इसलिए मैंने दूसरे को सुना है, फरमाते कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि इंसान ने खुद अपना मकाम याद रखा हुआ है.
He said, I heard from the elders that, you know, we don't understand our value.
अगर हम अपना मकाम याद करके अपनी पोजीशन समझते हैं तो फिर जिम्मेदारी को समझना निस्बतन आसान हो जाता.
If we understood our value, we would have understood our status in the eyes of Allah.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है.
We are the ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
हमारे ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां हैं.
There are many responsibilities for Nabi sallallahu
alaihi wasallam. आप नबी होने की वजह से कुछ जिम्मेदारियां हैं.
Because he's the last of prophet, we have responsibilities.
हमारे अंदर जो चीजें वदियात हैं हम अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या है.
We don't understand the treasures that we have inside of us.
जो कीमत अल्लाह ने हमारी बनाई है हमें खुद तसव्वुर नहीं है उससे.
The value that's been placed upon us, we don't understand the price that we
have. नबियों ने खामखा तमन्ना नहीं की थी कि काश हम उनकी उम्मत में होते.
It wasn't just a wasted trade that the prophets went dua to be amongst this ummat.
नबी की मारिफत इतनी बड़ी होती है.
And because the prophets understand.
क्या चीज हुजूर की उम्मत में देखी होगी कि परवरदिगार मुझे उम्मती बना दे.
So what did they see in being the ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam that they made dua to Allah to make them amongst ummat?
ऐसे अल्लाह पाक के वादे इनके साथ हैं.
Because the promises of the prop of Allah
subhanahu
wa ta'ala.
कैसे हमारे जाहिर और आलिम में सब में गांव और देहाती में और शहरी में अल्लाह पाक ने एक एक बंदे और बंदी में जो जौहर जो खसूसियत रखी है वो बहुत ही अजीब है.
Because Allah has made the capacity and the talents in each one of us, whether a villager or a city person, an alim or dahi, all of us have that capacity to do good deeds.
इसलिए हम सबको इस बात को समझना जरूरी है कि अल्लाह ने जो मुझे
So we need to understand that the Allah has given us this wealth, we should not waste it.
बहुत बड़ी कीमत है मेरे दोस्तों.
वी आर वेरी प्रेशियस.
उसी वजह से जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी.
बट दैट्स व्हाट रिस्पांसिबिलिटी
इज. हमारे खातिमुन नबी की नहीं.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रॉफिट.
आप कयामत तक के लिए.
टिल द एंड ऑफ टाइम.
आप सारे आलम के लिए.
फॉर द होल यूनिवर्स.
दुनिया का कोई कोना कोई चप्पा कोई देहात कोई जजीरा कोई आईलैंड कोई शहर कोई तमद्दुन का ऐसी नहीं है जहाँ जहाँ के लिए सरकार द्वारा इजाजत न हो.
No island, no village, no inhabitation, no any part of this world is not free from the responsibility of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qiyamah tak ke liye time ke itbaar se.
Until the end of time.
Huzur ke aane ke baad mein siwaye huzur ki ummat ke koi nahi.
After the Nabi sallallahu alaihi wasallam, no one would come until the end of time.
To is waste ke sare ab huzur hi ki ummat hai chahe mane chahe na mane.
Because we're all the ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam, whether we accept him or not.
Isliye huzur ki ummat mein se jo maan liye unko ummat e ijabat kehte hain, jo nahi maane unko ummat e daawat kehte hain.
That's why those who accept him are They call them the da'wah. Those who reject him are called them the da'wah.
सारे मजाहिब पहले के कैंसल हैं.
All the other religions are cancelled.
सारे किताबें कैंसल हैं.
All the books are cancelled.
अगर पिछले नबी आए तो वो पाबंद हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के.
Even if the previous prophets come, they are obliged to follow the commandments of Nabi sallallahu alaihi wasallam.
उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तौरात का सफा कहीं से मिल गया.
One time उमर रज़ियल्लाहु अन्हु saw a page of Torah.
वो लाके पढ़ने लगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने लगे.
एंड स्टार्टेड टू रीड नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम. ये समझ रहे थे कि हुजूर सुन के बहुत खुश होंगे.
एंड ही थॉट ओह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी हैप्पी.
मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर बदल गया.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेस चेंज.
हजरत उमर को जो है ना नीचे पढ़ रहे थे
और जो वो बिजी रीडिंग
हजरत अबू बकर ने देखा कि हुजूर नाराज हो गए.
अबू बकर सुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नाराज होते तो चेहरा लाल हो जाता था.
वली यूज के दैट स्पेस टू टर्न रेड.
सहाबा कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते ऐसा लगता था कि
कारनामा हुसैन अला वजह रहता है कि रुमान बिग पॉमेग्रेनेट would be on his neck.
तो सिद्दीक अकबर ने देखा कि बिल्कुल अनार की तरह चेहरा हो गया.
सो नबी अबू बकर सॉ ही इज बीइंग वेरी मैड.
फौरन फॉर समझ गए.
ही अंडरस्टूड.
तो उमर से कहा कि उमर देखते नहीं क्या आप.
इसे उमर को
जैसे हजरत उमर ने आप उठाई तो देख लिया पहचान गए.
तो उमर से सॉ ही नहीं आई अंडरस्टूड.
उमर रजी अल्लाह तआला ने पेज एक तरफ रख दिया.
ही पुट द पेज ऑन डाउन.
और घुटने के बल बैठ गए.
एंड ही सैट डाउन.
फरमाया रदीतु बिललाह रब्बा व बिलइस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह व नबी.
सो आई कंटेंट विद अल्लाह इज माय रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द प्रॉफिट एंड इस्लाम इज माय दीन.
तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई.
देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड समथिंग.
फरमाया कि उमर क्या समझते हो. लव काना मूसा हयन लमा वसिअहु इल्ला तिबाई.
इसे वही
उनकी किताब का पेज मेरे सामने लेकर आए हो. तुम समझते जाओ. लव काना मूसा हयन लमा वसिअहु इल्ला तिबाई.
इसे वही यू थिंक व्हेन यू ब्रिंग वन पेज फ्रॉम द बुक ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम इफ ही हिमसेल्फ वाज अलाइव टुडे ही वुड हैव टू फॉलो व्हाट आई एम
सेइंग. ये किताब तो बहुत दूर की बात है.
बुक इज नथिंग.
किताब के मानने वाले बहुत दूर की बात है.
नॉट इवन द पीपल फॉलो द बुक.
साहे में किताब आ जाए तो उसके लिए गुंजाइश नहीं है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा.
इट्स द पर्सन ऑफ द बुक. अंदर मूसा हिमसेल्फ केम डाउन एंड हैड टू फॉलो हिम.
अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा मकाम दिया है.
अल्लाह सब गेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच हाज का
आप सैयद अल अवलीन व आखिरीन है.
ही इज द लीडर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट.
आप उसी को जवान अल किलम शान रखते हैं.
आई हैव बीन गिवन
करीम
द हाउ आई कैन गिव यू कंसाइज अ वर्ड.
अब वहां उसी को इल्म قیامت تک اولین اور آخرین کا علم دیا گیا.
آئی ہیو بین گیون دی نالج آف دی فرسٹ اینڈ دی لاسٹ.
انا سجید ابن آدم آپ نے فرمایا.
آئی ایم دی بیسٹ آف آل دوز ہو واز بورن آف ایبیا.
آپ صاحب الکوثر ہیں.
I am that, he is that who will give the Qawthar.
Aap sahib shafaat al kubra hain.
He is he who will do the biggest shafaat.
Aap sahib al maqam al mahmood hain.
He is one who will give the mahmood.
Aap sahib al mi'raj hain.
He is one who will give the mi'raj.
Aap sahib al quran wal ayat al bayyinat hain.
He is one who is giving the quran and the clear sign.
Bahut bada maqam hai mere dost.
He is giving a very high
standard. Jitna sarkar ka maqam hai us nisbat se is ummat ka maqam hai.
So according to his status, that's the status of this ummat.
और जितना सरकार की उम्मत का मुकाम है उसके एक एक फर्द का मुकाम है.
एंड दैट इज स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस उम्मत.
इसमें काले गोरे की तकसीम नहीं.
डजंट मैटर इज ब्लैक एंड व्हाइट.
इसके अंदर पढ़े लिखे जाहिर की तकसीम नहीं.
लिटरेट इलिटरेट.
मरातिब अपनी जगह पर है.
द लेवल्स यस.
मानव का मर्तबा अलग है.
यस द उलूम. यस
के पास वो उलूम दीनिया तफसील से नहीं है. उनका मर्तबा अलग है.
यस देयर इज डिफरेंट रेंज ऑफ पीपल.
अल्लाह पाक ने मर्दों और औरतों की तकसीम से एतबार से नहीं
फरमाया.
शहर देहाती की तकसीम से
एतबार
से शहरों ने हर हर वर्ग को कीमती बनाया. एक और बात मेरे दोस्तों आपने किया करता हूँ इसमें ध्यान में रखने की
है.
और थोड़ी सी बेअदबी से भी बचने की कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि कहीं बेअदबी ना हो
जाए.
सिर्फ ये जहन नशीन करने के लिए अपने कि हमको अल्लाह पाक ने जो नेमत दी है हम उसका इंकार नहीं कर सकते तवालों में.
And we cannot, out of humility, cannot reject the status of Allah.
और उसकी नाकदरी नहीं कर सकते.
And we should not, how can you say, appreciate it.
और उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते.
And can't run away from responsibility.
और उस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकते.
Can't lose that opportunity.
जो नफा में हमें आता फरमाया.
That is Allah gave to us.
वो ये है मेरे दोस्तों भाइयों कि नबी की उम्मत, उम्मत का हर फर्द, उसमें नबी का असर होता है.
That each and every member of the ummah of Nabi sallallahu alaihi wasallam has an effect on the Nabi itself.
Nabi ka faiz hota hai.
He has the benefit of the Nabi.
Nabi ke asraat hote hain.
And the effects of the Nabi.
Sarkare Dua Alam sallallahu alaihi wasallam ka jo maqam hai uske etbaar se soche ek aadmi ke ek ek ummat mein agar sarkar ka faiz hai to ye faiz wala ummati kitne unche maqam ka hai Allah ke paas, Allah ke farishton ke paas, sari insaniyat ke paas, sare anbiya ke paas, sare auliya ke paas.
Because of the relationship we have with Nabi sallallahu alaihi wasallam, each and every one of us, each and every individual, this ummah has a status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, the eyes of the prophets, the eyes of the angels, because of our nisbat to Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Balki sufiya ne to yahan tak likha hai ki har nabi nabi ki har ummati nabi ke faiz ke baqadar deendar hota hai.
And the others have said that each and every ummati is as pious as the prophet that is the ummati of.
Ab bolenge ki aap sallallahu alaihi wasallam ka asar har ummati mein kaise hoga.
We said how you might think, well, how can we can have the part of Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Iski bahut si daleel hai.
We have proof of this.
Ek daleel arz karta hu.
Present one.
Aap sallallahu alaihi wasallam mi'raj mein darshan le ja rahe the.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj.
एक बहुत ही खूबसूरत एक बहुत बुढ़िया बहुत ज्यादा मेकअप की हुई बुढ़ी औरत खूबसूरत बन सवार के आपकी तरफ मुतवज्जो कहा या मोहम्मद इधर आना कुछ बात करना.
देयर वाज एन ओल्ड लेडी बट हैड अ लॉट ऑफ मेकअप विद अ लॉट ऑफ मेकअप शी टर्न्ड टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स हरसेल्फ.
हजरत जुबैर ने फरमाया कि हजरत इसी की तरफ मुतवज्जो ना हो आगे.
जुबैर ने सम टोल्ड हिम डोंट पे अटेंशन टू हर.
आगे चले तो सीधी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था.
सो द वन ऑन द राइट साइड ऑफ द मैन सेड
उसने कहा हजरत इधर तशरीफ लाइए कुछ बात करना है.
He said, "Please come to me. I want to talk to you."
Huzoor ne farmaya ki Hazrat Jibril ne aapne kya kehna hai Rasool Sahab ne aage chaliye isse nahi milna.
And Jibril told him, "No, don't talk to him. Let's go."
Aur aage chaliye to ek aadmi bhai taraf tha.
Next time he went somewhere on the left side.
Jibril ne kaha ki nahi iski taraf bhi mat aaiye mat hoiye aage chaliye.
He said, "Don't talk to him. Let's go."
Jab aage chale to pucha ki ye kaun the.
Then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked, "Who were these people?"
Farmaya wo jo aurat thi wo budhi thi wo duniya thi.
So that old lady was duniya.
और दुनिया उतनी ही रह गई है अब जितनी इस बूढ़ी की उम्र है.
एंड दुनिया द ओनली अमाउंट इज लेफ्ट इज द अमाउंट ऑफ बॉडी लेफ्ट इन दिस ओल्ड एज.
और बूढ़ी होने के बावजूद अपने को बन संभल कर ऐसे ही दुल्हन की तरह हो रही है हालांकि बूढ़ी हो चुकी है.
And in spite of the fact that he's old lady, she put makeup on to make herself seem attractive. Today we think, oh, it's
a bahut buddhi ho chuki hai, ab usme koi maza nahi hai.
He said, you know, this world has lost its attractiveness. You know, so it's old.
फरमाया कि वो दुनिया थी
so that was dunya.
और वो जो सीधी तरफ वाला आदमी था वो यहूदियत थी
and the one on the right was the Jews.
नहीं जूस नहीं यहूदियत
यहूदियत
और जो बाई तरफ वाला आदमी था वो नसरानियत थी
and the one on the left was Christianity.
उसके बाद हजरत जिब्राइल ने एक अजीब बात फरमाई
then Jibreel said something very special.
फरमाया कि अगर आप हुजूर को फरमाया जा रहा अगर आप उस बूढ़ी की तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत दुनिया पर पड़ जाती.
He said if you had turned your attention towards that old lady, your ummah would have turned attention towards dunya.
अगर आप उस यहूदियत की तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत यहूदियत पर पड़ जाती.
If you had turned your attention towards Judaism, then your ummah would also turn attention towards dunya.
अगर आप उस बाईं साइड की तरफ मुतवज्जे हो जाते तो आपकी उम्मत नसरानियत पर पड़ जाती.
And if you had turned left, your ummah would have been influenced by Christianity.
अब उसका सीधा तो मौका नहीं है कि क्या मुराद है यहूदियत पर पढ़ने का नसरानियत पर पढ़ने का. मगर यहाँ दूसरी एक बात समझने के लिए
बट इस स्पेशल पॉइंट
वो ये है कि हुजूर मुतवज्जे हो दुनिया की तरफ और उम्मत पड़ जाए दुनिया की तरफ.
Make a correlation that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam attracted to dunya, but it had effects the ummah.
Huzur mutawajjah nahi hue, lihaza ye ummah puri ki puri kabhi dunya pe puri tarah mutawajjah nahi hogi.
That's what the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was didn't turn to dunya, that this whole ummah can never be attracted to dunya.
Kitna hi gunah ke halat aa jaye, puri ki puri ummah dunya pe pad jaye, aisa kabhi nahi hoga. Ye majme bhi zarur rahenge.
That's why no matter how bad it gets, the whole ummah will never be influenced by you.
Is duniya ke khawasat mein se bhi aise chehre nikal ke aayenge.
You will have some diamonds such that will not be influenced by the world.
In gandagiyon ke andar se bhi aise phool khilte rahenge.
You will see flowers from some of this dirt.
Ye Allah Pak ye Huzur e Pak Sallallahu Alaihi Wasallam mutawajjih nahi hue lihaza ye ummah kabhi mutawajjih nahi hogi.
That's the effect of his actions in Miraj, the effect of this us.
But iska matlab ye bana ki huzur agar mutawajjih hote to ye ummat bhi hoti. Iska matlab ye hai ki aapki tawajjuh jidhar hai ummat udhar hogi. Iska matlab aapka maidan jidhar hai aapki tabiyat jidhar hai aapke asar jidhar hai aapki sifat jidhar hai aapki aapka batin jidhar hai aapki ruhaniyat jidhar hai is ummat mein uska hissa hota hai.
So we can draw the conclusion that because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didn't turn his attention to dunya, that affected this ummah, then wherever he does have the intention towards, wherever he does is in time towards, this ummah will also be in time towards those things.
इसलिए मेरे दोस्तों हम अपनी कीमत पहचाने.
That's why we should understand our value.
और अपने हाजिरी भी न भूले.
And never forget who we are.
ये भी नहीं है कि हम हिमाकत और तकबर में आ जाएं.
But don't become arrogant.
जो आदमी जितना ज्यादा कीमती होता है जब उसकी नाकदरी हुआ उसकी नाकदरी करता है तो उतना ही ज्यादा फिर उसको सजा भी दी जाती है और उतना ही ज्यादा उसको परेशान भी किया जाता है.
And the more valuable somebody is, but if he does not understand his value, then he is put in problems and he's punished.
इसलिए अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी हमें दी है हम उसको ले सकते हैं.
That's why we need to undertake the responsibility.
हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा मिजाज कैसा है.
We don't understand the responsibility.
हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे खमीर में क्या चीज मिलाई हुई
है. We don't understand the potential we have.
जो फिदाइयत और मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक के साथ थी उसके अज्जा मिले हुए हैं हमको.
The love of the mahfuz that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam have, we have a portion of that love in us.
जो इल्म अल्लाह पाक ने सरकार को अता फरमाया वो इल्म के असरात उम्मत के पास है.
That knowledge Allah gave Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, we have a portion of that knowledge.
जो रूहानियत और नूरानियत वहाँ है उसके असरात है इस उम्मत के पास.
That piety and that sincerity that Allah gave to him, we have a portion of that.
इसलिए हम मिल्लत इब्राहिम है मिजाज इब्राहिमी में हमारी ये बात है.
That's why we are the millet from the following of the Ibrahim alayhi salam. Because Hazrat
Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ka laqab hai millet Ibrahim.
Because that is the title of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, millet Ibrahim.
Millet Ibrahim kehkar Hazrat Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke is mizaj ko samjhaya gaya ki Ibrahimi mizaj samjhoge to Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ka mizaj samajh mein aayega.
That's why he's been given this title to understand the mizaj of Ibrahim alayhi salam, to understand the responsibility of this ummah.
Sab jante hain ki mizaj Ibrahim ki kya khususiyat
hai. We understand what is the mizaj of Ibrahim.
Mizaj Ibrahim hi uska naam hai ki uska rukh sirf Allah ki taraf. Inni wajhtu wajhi ki mera rukh sirf Allah ki taraf.
That he was only focused towards Allah
subhanahu wa taala. Fatara samawati wal ard.
He who created the skies and the earth.
हर एक रुख से मुराद फिजिकल रुख नहीं होता है.
नॉट जस्ट फिजिकली
रुख से मुराद दिल की चाहते
हैं. इंटरनली टू आवर हार्ट
दिल की नीयत
द the intent of our
heart,
the emotions that we have, the love,
कुर्बान होने का जज्बा,
the sacrifice,
कुछ देने का जज्बा,
to give,
खर्च करने का जज्बा,
to spend,
पूरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिजाज था ऐसा.
That is the मिजाज of Ibrahim.
पूरी मखलूक उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी.
And the makhluk was nothing in front of him.
Na nafa ke etebar se na nuksan ke etebar.
Neither to benefit or harm.
Koi wrong nahi tha unke dil mein.
It didn't affect him.
Koi lalach nahi thi unke dil mein.
There was no motive inside him.
पूरे इंसानों के दुश्मनी की परवाह उनको नहीं थी.
He didn't care when everybody was attacking.
वक्त के बादशाह की दुश्मनी की उनको परवाह नहीं थी.
Even the king of the time, he didn't care.
मैंने बताया ना कि नमरूद वो बादशाह था जो पूरी दुनिया का हाकिम था.
As if you just shared that the king of the time was one of the four who was the king of the whole world at the time.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तिनके की हैसियत नहीं थी.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम was nothing.
कोई तासुर नहीं था उसका.
But he said no, nothing.
दुनिया जानती है कि क्या हुआ है इब्राहिम के साथ.
No, history tells us what happened.
उनको आग में डाला गया तो क्या हुआ.
It tells what happened was put in the fire.
रुख अल्लाह पाक की तरफ ऐसा था कि जिब्रील ने भी कहा कि अलक हाजा अभी का हाजा और मैं अम्मा भी का फला.
Even Jibreel himself came when he was in the fire, and the Jibreel said, "Look, do you need some help?" He said, "No, from you, I don't want anything from you."
हाँ चाहिए मुझे लेकिन दूसरे नहीं.
He said, "Yes, I do have a need, but not from you."
अगर उनको जला देना है मैं जलने के लिए तैयार हूँ.
If you want me to burn, I'm ready to burn.
अगर उनको बचाना है तो वो बचा लेंगे, वो किसी चीज के पाबंद नहीं.
If you want to save me, he can save me.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को खलील थे.
Ibrahim was a friend of Allah.
Allah Pak ke liye sabit bhi waise karte the apni mohabbat ko.
And he proved his love.
Aur Allah Pak unke nakre bhi waise bardasht karte the.
And Allah subhanahu wa ta'ala forbore his
Allah farmaye ki jab Jibril ko gas nahi dal raha aadmi to Allah Pak ne faisla farma diya khud hi ki ye to bhai mere se hi manega.
That you know Allah subhanahu wa ta'ala that he's not listening to the angels. Allah subhanahu himself came out to help.
Allah subhanahu naru ya naru kuni barda.
Allah
ya aap ka phool thandi ho jaye.
Allah subhanahu commanded the fire directly that you be cool.
Direct aapko thande salaam ki wali bana diya.
Direct commanded to the fire.
Aur ye matlab nahi tha ki aap jal nahi rahi thi.
It doesn't mean that the fire was not burning.
Wo jala nahi rahi thi.
Doesn't mean it wasn't burning.
Ha kehte hain ki jab 40 din guzar gaye तो नमरूद आया और आग से कहने लगा कि जलाती क्यों नहीं.
द नमरूद केम आफ्टर 40 डेज तो व्हाई इज इन दिस फायर बर्निंग.
आज हमारा रूह ने लिखा है किस्सा.
और द रूह ने सेड दिस
अल्लाह पाक ने आग को जुबान दी.
सो द फायर टॉक्ड
और फरमाया कि मैं जलाती हूँ मगर तू आ.
आई बर्न बट इफ ओनली यू कम.
यहाँ तो मजबूरी है.
इसे क्लियर ना हुआ है.
यहाँ मुझे आर्डर दे दिया गया है कि मैं
और
किसी की परवाह
नहीं
के मामले में.
इन द मीन्स इन द मीन्स ऑफ
वतन को छोड़ने को कहा वतन छोड़ दिया.
इज अ लीव टू कम टू हिला.
बीवी को छोड़ने को कहा बीवी को छोड़ के आगे.
इज योर वाइफ हिला.
बीवी भी कैसे ईमान वाली थी.
एंड द वाइफ वाज सच
हमारा कभी आता.
She asked him, "Allah, what did you do this?"
उन्होंने फरमाया, "जी अल्लाह ने हुक्म दिया है तभी तो तुमको मैंने यहाँ वादी अगर इसकी तरह में छोड़ा है.
He said, "Yes, Allah ordered me. That's why I left you in this deserted
place." इधर नहीं ऊपर की आज अल्लाह फरमाया तशरीफ ले जाइए अल्लाह में जाए.
That's the case. No problem. Allah will not waste us.
Asbab nahi the.
There was no means.
Hazrat Hajra ke saath asbab e zindagi nahi the.
Hajra ke saath didn't have any means.
Makan bhi bana hua nahi tha.
There was no house.
वहाँ पे कपड़े नहीं थे.
There were no clothes.
वही कपड़े जो पहने हुए थे.
Whatever she wore is washed again.
खाना पीना नहीं था.
There was no food.
वही दोषा जो मुश्किल में था.
Whatever provisions they
brought. पानी उतना ही था जो मुश्किल में था.
Whatever water was in their water skin.
गर्मी से बचने का कोई सामान नहीं.
No provision for heat.
सर्दी से बचने का कोई सामान नहीं.
For cold.
अंधेरे में उजाला करने का कोई सामान नहीं.
No provision for darkness.
फरमा आप जाइए.
This is not you go.
अगर उसको मारना है तो मार दे.
Allah wants to kill us.
अगर उसको बचाना है तो वो कुछ करेगा.
But if Allah wants to save us,
वो पाबंद नहीं है किसी चीज का.
He's not in need of anyone.
मिजाज इब्राहिमी में औरत का मिजाज ऐसा होता है.
That is the मिजाज इब्राहिमी in a lady.
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मिजाज इब्राहिमी वाली है.
And the ummat of Nabi sallallahu alaihi wasallam is from मिजाज इब्राहिमी.
उम्मत की औरत का मिजाज ऐसा होना है.
This is the मिजाज of the lady.
और उम्मत के मर्द का मिजाज ऐसा होना है.
This is the मिजाज of the man of the ummat.
और उम्मत के बच्चों का मिजाज हजरत इस्माइल वाला होना है.
And the मिजाज of the children is that of Ismail.
Ya bunayya inni ara fil manami anni asbah. Sahibzade main dekh raha hu ki tumko zubah kar raha hu.
Ibrahim alaihi salam telling his son, "Oh, you know, son, I see you in my dream that I am sacrificing."
Manzoor mazata.
He said, "What do you think?"
Ye matlab nahi tha ki wo chote bacche the unko nahi malum tha.
He said, "Doesn't mean that they didn't know what was happening."
Wo nahi samajh rahe the ki mujhe zubah karne ka kya matlab hai.
He said, "What does it mean he was sacrificing?"
Wo itne chote nahi the.
He was that small.
Aur farmaya उन्होंने एक अजीब बात कही,
अब्बाजान
जो हुक्म है ना वो पूरा कर देना
चाहिए,
या अबी इफाल मा तुमर, अब्बा सिर्फ हुक्म देखना रहता है अपने को, जो हुक्म है वो करो, लिहाजा मुझे काटने को पूरा काटो, अब ये कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं अपना फैसला बता देता
हूँ,
सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे, गड़ा कट जाएगा लेकिन आप नहीं करूंगा,
मतलब
असलमा वतल्लबुली जबी ना देना इब्राहिम कद सद्दक्त रुया, जब दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को परेशानी के बल लिटा दिया और छुरी चला दी, अल्लाह पाक ने आसमान से आवाज दे दी, इब्राहिम बस ख्वाब सच्चा हो गया,
एंड व्हेन दे बोथ सब्जेक्टेड देमसेल्व्स एंड ही पुट द नाइफ यू नो अंडर हिम, देन देयर वाज एन आंसर, ओ इब्राहिम यू बोथ हैव फुलफिल्ड योर कमांडमेंट्स,
और छुरी को हुक्म दे दिया कि गला नहीं काट सकती,
एंड दे कमांडेड हिम टू द नाइफ टू नॉट कट इट,
वो तेज थी हालांकि,
इवन ऑन द शुगर
लाइक यू शो है कि छुरी तेज किसने करके दी थी,
एंड You know who gave that knife?
हजरत हाजरा ने छुरी को तेज करके दिया था,
हाजरा शार्पर द नाइफ फॉर हजरत,
कपड़े में लपेट के दिया था,
कैसे
रोकती हुई है, जब उस शख्स ने बिना कदन बफा को खून गलती दन खुदा रहमत खुदा दी आशिकाने पाक की नजरा, अजीब जज्बा था ये असल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है,
These are the emotions of the men, women, children of the Ummat Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam. Allah Pak ne hame bhi diya hai.
And that is given us to us also.
Hamare andar hai ye cheez.
We have that potential.
Isko thoda sa ukhaane ki zarurat padti hai.
Bring it out.
Isko thoda sa finishing mein aane ki zarurat padti hai.
Finishing touch.
Isko ghiza chahiye thodi.
It needs some nutrition.
Agar yehi mohabbat hamare andar aa jaye.
If these emotions come inside
of us. Agar Allah se aise taalluq hamara ho jaye.
If that relation do we establish with
Allah. Allah ko raazi karne ka jazba hamara
हमारे आंखों के सामने आखिरत ऐसे हो जाए जैसे सहाबा की थी,
मेरे दोस्तों अल्लाह पाक हमें भी बड़ी बड़ी तौफीकें दे दे,
अल्लाह की गिवन तौफीक टू डू मेनी थिंग्स,
बड़े बड़े हौसले कर सकते हैं,
वी कैन डू मेनी थिंग्स,
बड़ी हिम्मत से काम कर सकते हैं,
अपनी
जिंदगी की तकदीर बनाना 40 महीने 40 दिन और 4 महीने के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता,
सो टू मेक इट 3-4 डेज फॉर वन,
हम सोच ही रहे इसके ऊपर,
वो ना इवन
थिंक और इस तैयारी की अहमियत नहीं ले रहे,
वो ना अंडरस्टैंडिंग दिस,
इसकी जरूरत नहीं समझ रहे, सारी इंसानियत से चल रही है,
द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर,
मुसलमान इत्तेदाद के किनारे पर है,
मुस्लिम बेदीन,
बेदीने का सैलाब आया हुआ है,
द फ्लड ऑफ बेदीन,
हजारों लाखों ने करोड़ों की तादाद के अंदर उम्मत बेनमाज करने के दुनिया से जा रही है,
हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियंस आर लीविंग दीन एंड डाइंग,
मगर हमारे दिल के अंदर दर्द नहीं आ रहा,
वी डोंट हैव दैट कंसर्न,
सरकारे द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ऐसे ही था,
That was that the love of Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam. Aapki fikr aise hi thi.
Was that his concern?
Aapki soch aise hi thi.
Was that his thing?
Aise nahi thi.
No.
Aur iska matlab aur hamare ko zimmedari hai ki hamari fikr ke andar bhi waise asraat aana hai. Boliya ki baat waise asraat aana hai.
And we've been obligated to have similar thinking as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hume sochna hai ki kitni bhari zimmedari hum par hai ki hum Allah ke din ki mehnat ke liye sabr kare.
So we need to think of such a big responsibility where our fathers to travel for sake.
Uske liye khuruj kare.
That's why we need to go.
Uske liye program banaye. उसके लिए पैसा लगाएं,
टू स्पेंड मनी,
उसके लिए अपने आप को बेआराम करें,
एंड टू मेक आवरसेल्फ्स अनकंफर्टेबल,
मशक्कतें बर्दाश्त करें,
टू फॉरबेयर हार्डशिप्स,
बीवी बच्चों की थोड़ी बहुत जुदाई को बर्दाश्त करें,
टू फॉरबेयर द बीइंग ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन,
बीवी बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त करना वो भी थोड़े दिन के लिए 4 महीने के लिए 40 दिन के लिए क्या चीज है मेरे दोस्तों,
बट दिस टू बी ऑनेस्ट 40 डेज फॉर मंथ इज नथिंग,
हजरत साहबा को देखो कैसे बर्दाश्त
किया,
25 साल के बाद भी खड़ा आने वाले साहबा के नाम मौजूद नसीरत
थे, वी फाइंड इन द सीन साहबा ग्राम सम साहबा ग्राम कम बैक आफ्टर 25 इयर्स,
अब अंदाजा फरमाइए कि कैसे अल्लाह के रास्ते में गए वो लोग,
कैन यू इमेजिन दैट 25 इयर्स,
उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था,
दे वाज हार्ड फॉर
देम, वो कुर्बानी दे गए,
दे वर रेडी फॉर
सैक्रिफाइस, उनके सामने था कि जितनी कुर्बानी देने की अल्लाह तौफीक दे देगा उतना ही मैं लकी पर्सन हूं,
दे रियलाइज द मोर द सैक्रिफाइस द मोर दे विल इन्वेस्ट,
उनके लिए महबूब से महबूब चीज को छोड़ना अल्लाह के लिए आसान था,
दे रियलाइज दैट टू लीव द मोस्ट बिलोंग थिंग्स वाज इजी फॉर देम,
अल्लाह का हुक्म के लिए आसान था,
टू ओबे अल्लाह
तआला, नबी के फरमान पर आसान था,
ओबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि तुम जाओ यमन,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को
कहते हैं मेरे साथ मुआज ने जबल है तेरे साथ में हजरत मुआज है हजरत मुआज ने जबल को भेजा यमन की तरफ
पता जी हां मुआज ने जबल से किया है
और हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ मुआज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज ओ मुआज आई लव यू
हमारे दादा फरमाएंगे कि हुजूर ने मोहब्बत का इजहार
फरमाया
की मोहब्बत का हाल ये था कि अगर हुजूर याद आ जाए और हुजूर पैगंबर सल्लम नजर नहीं आए तो वो हुजूर के दरवाजे पे सर रख के सो जाते थे सुबह तक.
As the Quran was such that in the love of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in his remembrance, when he would think about him, he would go to his house, and even if you couldn't see him, he would just lay his head, his head in front of his house. He didn't have the, the courage to go to his house. And he didn't want to bother him.
डिस्टर्ब करना भी गलत
है
और घर जाने को भी मजा नहीं आ रहा
है.
वही लड़ जाते थे उनकी मोहब्बत का ये हाल था. जान से ज्यादा चाहते
थे
हर चीज से ज्यादा सहाबा हुजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास को अल्लाह के रास्ते में भेज दिया.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुशायरात के लिए तशरीफ ले गए.
आपकी आदत
रहती
थी जब किसी को अल्लाह के रास्ते में भेजते
तो
दूर तक उसको छोड़ने के लिए जाते.
माज सफर सवारी पर है.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते
हैं. ये नहीं हो सकता मैं उतरता हूँ.
हुजूर ने फरमाया कि नहीं ये नहीं हो सकता तू बैठेगा. तो वो उनको ऊपर ही रखा और खुद तशरीफ ले जा रहे
हैं.
नसीहत फरमा रहे हैं कि ये करना.
एडवाइस
बातों में एक बात फरमा दी. फरमाया माज जब तू अगले साल आएगा यहाँ पर तो मुझे नहीं पाएगा.
So when you come back and see you won't find me.
मेरी कब्र पर आएगा.
You'll find my grave.
बस माज आप से बाहर हो
गए. उनकी
चीज निकल गई. आंखों में भी आंसू आ गए. आपने अपने चेहरे मुबारक एक तरफ फरमा
लिया.
कल क़यामत में मेरे करीब सबसे ज्यादा वो होगा जो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा.
उसी की हालत में And he left while crying. They sacrificed everything. They sacrificed the separation of the wife and children. And because we left him, if we remind ourselves about the importance of their
effort,
and the importance of the benefit of going to
Allah,
how it can bring us closer to Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam,
how it will make our this world that I
asked you about,
how the humanity will benefit.
Iman aur amal ka ek mahol ke waste jo mehnat chahiye, us mehnat ke liye main aur aap mere dosto mehnat karna hi karna hai.
So we have to participate in this effort.
जो रुकावटें हैं उन रुकावटों पे काम करना है. कुछ मुश्किल नहीं मेरे दोस्त. बहुत ऐसी रुकावटें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता.
सब हर्डल्स आर देयर वी डोंट थिंक अबाउट.
बहुत मतलब हम ये समझते हैं कि हम अपनी होशियारी से नहीं जा रहे हैं.
समटाइम्स यू थिंक ओह आई एम नॉट गोइंग बिकॉज़ आई एम स्मार्ट.
ये होशियारी नहीं होती.
इट्स नॉट बीइंग स्मार्ट.
अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जब मैं किसी से नाराज होता हूँ तो उसको तौफीक नहीं देता हूँ.
Allah said that when I'm mad with somebody, I don't give them.
محروم کر دیتا ہوں.
I make them محروم.
کام کرنا مشکل کر دیتا ہوں.
I make it difficult for them.
ولکن منافقین کے بارے میں فرمایا جب وہ جی گئے تھے حضور کے ساتھ ولکن کری اللہ بعاثہم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. اللہ ہی کو پسند نہیں تھا ان کا اٹھنا تو ہم نے ان کو جمع دیا اور کہا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ.
And then in reference to the منافقین who didn't go, Allah said, look, you stay with those who stay back.
कभी हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से तौफीक नहीं हो रही होती है.
Sometimes due to the effect of our sins, we lack the impetus to go to God.
कभी हमारा माल की मनहूस होने की वजह से अल्लाह पाक उसको नहीं चाहते कि अल्लाह के रास्ते में लगे.
Sometimes because our wealth is not pure, due to that we it doesn't accept in God.
कभी अपने अंदर के गुरूर और तकबर और खबासत की वजह से महरूम किया जाता है कि ये दूसरों को अधिक समझता है.
Sometimes because of our own pride and arrogance and we're not thinking we're better than other people, we're mahroom of going to bed.
Or mukhtalif qisam ki majbooriyan aankhon ke samne la deta hai.
And we apparently find certain things that are hurtful.
Dosto ye majbooriyan haqeeqi nahi hoti.
These are not real hurdles.
Jo haqeeqi majboori hoti hai usme waqaiatan ijazat hoti hai.
If there's a real hurdle, yes, you can stay.
Aur wo hazaron lakhon mein kisi ko hoti hai.
Those are very few.
Haqeeqi majboori to wo cheez hai ki sarkar ke
That we find one example that that a real excuse that we have, at least not to present it, but that's what I was
trying to do.
Because his mother was alone.
और उनकी खिदमत के लिए कोई नहीं था।
There was no one to do her khidmat.
अगर हजरत उवैस चले जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तो माँ को तकलीफ पहुंच जाती है और हो सकता है कि मरीज मर जाते हैं।
If he had went to visit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, it's possible that his mother may have died and she may have
been a nurse.
All he had to do was come and see Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. One time
he would have become a Sahabi.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told him, no, don't come.
And that's the obedience.
That is the real emotion.
हजरत वैश को हुजूर से मिलने के लिए कितनी मोहब्बत तड़पा रही होगी बंदा
तो imagine how he would have loved to see Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam. मगर हकीकी मोहब्बत तो बात मानने का नाम है.
But the real love, the impression of real love is obedience.
तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं तुम नहीं आना माँ के पास रहना तो माँ के पास रहेंगे हालांकि हुजूर को नहीं देखा.
He said, no, don't come, stay in the khidmat of your mother.
Sahabi ka sharaf lene se reh gaye.
And he was mahroom from the sharaf of being a sahabi.
Tabi'i ho gaye.
He became a tabi'i.
Magar aapko pata hai ki afzalut tabi'i hue.
But he became the best of tabi'i.
Aur aise tabi'i hue ki Hazrat Umar ko Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya ki ae Umar jab tum Uwais Karni se milo to unse ummat ke liye dua karana.
And such a tabi'i that he told Umar radhiyallahu anhu that when you meet Uwais Karni, they have him make dua for the ummah.
Haqeeqi majboori kisi ke saath ho to halaat rakhe jaye zimmedaron ke saamne wo nahi bolenge aapko main
masoob hai. So if we really have a real excuse to talk to the elders, yeah, they won't let you go.
Magar jis tarah ke halaat mein main aur aap hain usme koi aisi majboori nahi.
But the condition that we are in, no, those are not real excuses.
So puri duniya mein itne log Allah ke raste mein phir rahe hain.
So all the people that go in the path of Allah.
मालूम है उनकी भी फीलिंग यही थी कि सब जा सकते होंगे लेकिन मैं नहीं जा सकता.
In the beginning they thought, well, how can everybody else go and I can't go in?
और जो बहुत थोड़ा वक्त लगा रहे वो समझते थे कि मैं थोड़ा वक्त लगा सकता हूँ ज्यादा नहीं लगा सकता.
And those who are spending only little time they thought, oh, I can only do this much.
जो जितना ज्यादा वक्त लगा रहे उनकी फीलिंग पहले यही थी कि मैं इतना तो नहीं दे सकता.
Those who spend this much time, the initial thought, no, I can't do this.
लेकिन काम करने में पता चला कि बस वो शैतान की तरफ से वर्क लाया जा रहा
था. But the more they do it, the more they realize it's a trick of शैतान.
हम समझ लेते कि हमारी अपनी जरूरत है मजबूरी है वो.
We think, well, there is some real excuse.
ना कारोबार डिस्टर्ब हुआ.
Then nothing was
this. ना बीवी बच्चे मुतासिर हुए.
Our wife and kids don't
get it. पीने की परेशानी आई.
Our eating drinking was
okay. ऐसे नहीं किया ही.
Our house was
okay. जिंदगी में बरकत आ गई.
In fact, किसी बात
का भी इज्जत बढ़ा दी.
And honor.
महबूबियत बढ़ा दी.
And love.
दौलत में इजाफा हो गया.
And increase in wealth.
बेशुमार बरकतें दुनिया में आंखों से देख ली.
We see many blessings in this world.
ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम नहीं कर सकते.
Today we sometimes say, oh, no, I can't.
ऐसी बात नहीं है मेरे
भाई. No, no,
मैं और आप सब अल्लाह के रास्ते में जा सकते हैं.
We can all go on the path of Allah.
और हम सब अल्लाह के रास्ते में ऐसी तरतीब बना सकते हैं कि हमारे कमाने का नहज बदल जाए.
And we can all make it in such a way that the way we earn money can just change a little bit.
अल्लाह पाक ने ऐसे कोई पाबंदी नहीं लगाई कि तुम 12 महीने कमाओगे तो 12 महीने जिंदा रहोगे वरना नहीं.
There's no rule that Allah subhanahu wa ta'ala said that if you work 12 months you get the money for 12 months.
ऐसा नहीं है अल्लाह पाक.
No, it's not such a rule.
वो तो एक महीने की कमाई में सालों निकलवा दे.
Yes, if you want, Allah subhanahu wa ta'ala give you wealth for years. Yes, you want.
सिर्फ अल्लाह के साथ गुमान का मसला है मेरा, भरोसे का मसला है.
It's how you have expectations of Allah subhanahu wa ta'ala.
जितना भरोसा बात बंदा अल्लाह पर बनाएगा छोटा सा वक्त भी उसमें बरकत का बायस हो जाएगा.
The more you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, the more Allah will bless in it.
हम बहुत रिस्क लेने को नहीं बता रहे.
We're not asking to take a lot of risk.
लेकिन हम अपनी मजबूरियों का वो एनालाइज कर नहीं कर सक रहे वो अर्ज कर रहा
हूँ मैं. We just say that we need to analyze our responsibility.
ये काफी नहीं है कि मेरे दोस्तों हम इसी तरीके से काम करते रहे.
This is not what it means.
और हमें टाइम ही नहीं मिला दिन की मेहनत करने का.
And we don't have time to effort it.
कितने दिन से आप मजबूर हैं?
How long will you be in?
कितने दिन से आप अपने काम में लगे हुए हैं जिसकी वजह से मजबूरी में नहीं जा सक रहे?
How long have you been in this condition?
उम्र क्या है आपकी?
And how old?
उम्र 60 साल का हो गया हूँ मैं. 40 साल से तो कर रही हूँ.
तो 40 years
तो 40 साल से मेरी मजबूरी नहीं खत्म हुई.
So for 40 years this excuse has been there for you.
आप क्या समझते हो 40 साल में खत्म हो जाएगी?
देखो
कभी भी नहीं खत्म होने वाली. मतलब ये बना कि ये सतत खुद गड़बड़ का है.
सो इट मीन्स दैट देयर वाज ए प्रॉब्लम इनसाइड ऑफ अस.
अल्लाह तबारक व तआला का भी अंदाज है मेरे भाई.
दिस स्टाइल ऑफ अल्लाह.
पिछले लोगों के वाकयात अल्लाह पाक के बयान फरमाए और उन्हें समझाया बहुत सी चीजें.
That's what Allah subhanahu wa ta'ala gave us some examples of people and they made us understand.
Allah Pak ne ek qaum ko ye hukm diya ke tum is jangal se jao aur jo kaam main laga raha hu wo kaam karo.
Allah subhanahu wa ta'ala ordered a nation that you go to this place and do what I told you to do.
Unhone kaha ke nahi hum nahi jate.
Jaisa na we don't want to go.
बहुत जरूरी काम लग रहा था
वहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट टास्क
जब बहुत ज्यादा जरूरी काम है जाओ बोल के इशरा किया गया तो कहने के नहीं आप जाओ और आपका खुदा जाओ दोनों में उसे कहा कि आप पैगंबर से कहा तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाओ दोनों मिलकर करो
And when they were told to go again, they said, no, no, you and the prophet, so we're not going to go. You mean the prophet? I can't do it with them. I'm ready, my brother is ready, but you know, they're not ready, I can't do it.
Allah subhanahu wa ta'ala ne farmaya ki acha, ye log nahi jana chah rahe तो हम भी हराम किए देते हैं उनको इनको इस जगह से निकलने पर 40 साल के लिए फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अरबईन सनतन यतीहून फिलार
He said, because of this, Allah SWT made it forbidden for them to go to the place where they wanted to go. For 40 years, they were just wandering and wandering, they didn't get anywhere.
40 years ago.
40 years.
सुबह होते शाम दिन में चलते थे रात में थक के सो जाते थे फिर सुबह आगे जाएंगे जब सुबह होती तो वहीं होते थे जहाँ से चले थे
In the morning they would get up and they would traveling, going to their destination. They go to sleep. The next morning they get up, they find out they were wherever they were last year.
अल्लाह ने फरमाया मुझ पर भरोसा करो मैं बस हो जाता हूँ
अल्लाह से जो रिलाय ऑन मी आई विल बी
फ्रॉम अल्लाह ही तवक्कुल करो इन कुन तुम मोमिनीन तवक्कुल तो करो अगर तुम ईमान वाले हो
He said if you rely on me if you really true believers
अगर रुबूबियत में शक है तो फिर रुबूबियत का यकीन बनाओ
And if you have deficiency in the quality of Allah to be the provider then you definitely need to go
इसलिए इस फर्ज को लो अपने ऊपर कि ये भाई से तुम मत मुसलमान होने के ये तुम्हारी जिम्मेदारी
And you take this responsibility of being
और जो बहुत से काम है ये भी काम हमारे ऊपर
जबरदस्त
नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का हुक्म है इसलिए हमने रखा अल्लाह का हुक्म है इसलिए हमने निकाली जिन्होंने निकाली अल्लाह का हुक्म है इसलिए हज हम करते हैं अल्लाह के हुक्म की वजह से
जो हज के खिताब के बाबा
अल्लाह के दीन की मेहनत अल्लाह के हुक्म की वजह से करना है
सो वी डू दिस बिकॉज़ इट्स खिताब के बाबा
अल्लाह के हुक्म को लेकर पूरी दुनिया में फिरना है
ठीक इस खिताब में थ्रू ऑल द रेस्ट
हम में से हर एक इसका जिम्मेदार है
ईच वन ऑफ अस इज रिस्पांसिबल
अल्लाह पाक के हुक्मों को लेकर फिरने वालों को ठिकाना देना है मदद करना है
एंड टू हेल्प दोस गो द पाथ ऑफ अल्लाह
मुसलमानों को इन दोनों किस्मों में बांटा अल्लाह पाक
ने अल्लाह सब दिवाई और मुस्लिम दीस टू कैरी
और कामों के साथ में ये दो कामों को तुम भाई से मजबूरी तुमको एक चीज दी जा रही है जो सारी चीजों की बुनियाद
इन एडिशन टू अदर रिस्पांसिबिलिटी यू हैव टू बी पार्टिसिपेट दीस टू एक्टिविटीज
इसलिए इसमें सुस्ती ना करो
तो लेट्स नॉट बी लेजी
जितना लगोगे उतना सवाब दूंगा
द मोर यू इन्वेस्ट द मोर अल्लाह विल
एक्शन पर सवाब दूंगा
एवरी एक्शन इज रिवॉर्ड
आपके ऊपर नहीं आपकी सवारी
आपकी
सवारी ने जो घास खाया उस पर सवाब दूंगा
The grass that the ride eats, even that.
आपने सवारी ने कितना मैदान तय किया उसका जवाब दूंगा.
The distance that it traverses, you'll be rewarded.
उसमें तुमको सर में दर्द हो गया उसका जवाब दूंगा.
You get a headache, you'll be rewarded.
बुखार आ गया उसका जवाब दूंगा.
You get a fever, you'll be rewarded.
जख्मी हो गए खून निकल रहा उसका जवाब दिया जाएगा.
You're wounded, you'll be rewarded.
मेरे बंदे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया मेरी बड़ाई उसके सामने सुनाई उसका जवाब दूंगा.
And to turn people's attention to Allah, you'll be rewarded.
उसने बदतमीजी की उसका जवाब दूंगा.
Even somebody who disrespects you, you'll be rewarded.
उसने कबूल कर लिया उसका जवाब दूंगा कबूल करके वो दीन पे लग गया दीन के काम करने लगा तो जितने करेगा सबका जवाब दे
दूंगा
इतना ज्यादा क्यों है सवाल मेरे भाई इतने अलग अलग क्यों बयान किया गया है
व्हाई ऑल दिस स्पेसिफिकली
ताकि ये उम्मत इस काम की अहमियत को ले ले के अल्लाह के पास ये कोई बहुत ही स्पेशल चीज है
So the Ummah understands that this is a very special responsibility.
इसमें secret है.
There must be some special secret.
अल्लाह पाक का राज छुपा हुआ है.
What is that secret?
क्यों अल्लाह पाक इसको मेरा काम बोल रहे हैं?
Why is he saying it's my responsibility?
क्यों अल्लाह पाक इस काम के करने को मेरी मदद बोल रहे हैं?
Why is he saying you know to do this effort you're helping him?
क्यों अल्लाह पाक काम करने वाले को पर तरबीत देते हुए फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह ईमान वालों अल्लाह की मदद करने वाले बन
जाओ. That's why Allah says those who do this to be the helpers of Allah.
तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों में चमकाएंगे
बिकॉज यू वांट टू शाइन दिस वर्ल्ड एंड
आखिरत बड़ी मेहनत करना है
जिस मेक लोग
मुजाहिदा करना है
मेक इट सैक्रिफाइस
अपने आप को बेआराम थोड़ा होने के लिए राजी करना है
इट्स अ नो डिस्कम्फर्ट
खाने पीने की जो तरतीब होती है वो तरतीब को थोड़ा सा बदलना है
मेक discomfort. Just make it the tartib of your earnings.
Aur kitne log hain ki jinke paas bahut time hai mashallah.
Many people have a lot of time.
Aur kitne log hain ki jinka profession alag hai, job alag hai.
Many people have a lot of different professions.
Agar hum apne profession se job ke paaband ho gaye to ye thodi hota jo yahan ho raha hamare sath.
You know, if we were limited by the profession that we have, we wouldn't see all this. Allah is providing us from so many different avenues.
Did
we ever think that we can be?
Because
we study something else and we're working something else, this is how we
give it.
Everything is easy for
Allah.
So we can make it the theme in our
life.
Take
out time.
We only have to rely on Allah and make the
intention. Allah ke habib ki mohabbat mein irade karna hai ki puri duniya mein main ja ke Allah ka paigham pahunchaun.
And for the sake of the love of Allah and the love of his habib, make the intention to go all throughout the world.
Har kacche pakke makan tak Allah ki badai pahuncha do.
Enter every strong and weak house.
Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ki paaki da seerat ko nizam mein rakh do.
To present the pure life of Nabi.
Allah ke bande banane ki mehnat kar dalo.
Make an effort to make people the slaves of Allah.
Isliye apni jaan khapa do.
To serve by life.
Jitna zyada ye zeer aur jazba mere andar aayega, mere dosto Allah Pak mujhe utna zyada pasand karega.
The more emotion, the more the drive that I have, the more Allah will love me.
Aur Allah Pak utni meri niyat ke itebar se mujhe qubool farmayega.
And Allah will accept me according to my
intention.
And
give me more tawfiq.
And give me the asbaab.
And
remove the
obstacles.
That's why Allah has given me the ability to make the intention. I have to stand up and give the
intention. पहले इरादा कर, तू पहले पलट, उसके बाद फिर मेरी तवज्जो दे और मेरी तरफ से आसानियां दे.
That's what Allah saying. You first make the intention and see what I do.
ये तकरीब अल्लाह पाक हो, यह दीले ही मयूनीब. जो पलटता है उनके तरफ उसको रास्ता देते हैं.
This is the system of Allah set up. Allah turns on him who turns toward him.
बहुत आसान चीज है, कोई खर्चा नहीं होता.
It's very easy. There's no
effort. सिर्फ अज़्म करना होता है.
Only through the intention.
दुआ करनी होती है.
And dua.
रुजू इल्लाह करना है.
And turn to Allah.
माफी मांगना है अल्लाह से.
And to repent.
इसलिए हम साथ ही सारे के सारे अज़्म करें कि हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे.
All of us make intention to go to the path.
और सब के अज़्म करें कि चार चार महीने के लिए जाएंगे.
दो फसलों
जिनके चार महीने लग गए वो भी जाएंगे, जिनके नहीं लगे वो भी जाएंगे.
दो they should go, those who haven't spent one day should go too.
जो बड़ी उम्र के हैं वो भी, जो कम उम्र के हैं, अधेड़ उम्र के हैं वो भी जाएंगे.
Almost and young.
जो फारिग हैं वो तो जाएंगे ही, जो मशगूल हैं वो भी तरतीब
बनाएंगे.
अगर उम्मत इस तरह अपनी जिम्मेदारी को लेकर खड़ी होगी तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जो होगी.
If we as a group make this intention, the blessings of Allah will turn to
us. हमसे और सारी उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह पाक हालात को सही कर देगा.
And Allah will use us as a means of fixing the conditions of the ummah.
और दुनिया के अतबार से भी अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को चमकाएगा और आखिरत में भी
चमकाएगा. And this world and the life hereafter.
सब तैयार है इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको हिम्मत दे. सबको हौसला नसीब फरमाए. हम सबको आली हिम्मत बनाए.
हुज़ूर
का फैज खींचने वाला बनाए.
Please divide
Allah's
giving.
MashaAllah, shuru farmaye Allah ki daya, Allah qubool farmaye.